اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترسى له. آپ نے کبھی موٹر وے پہ سفر کیا, بارہا کیا, عام سڑکوں پہ بھی سفر کیا, بارہا کیا؟ موٹر وے کا سفر اور عام سڑکوں کا سفر بہت فرق ہے اس میں. وہاں جگہ جگہ آپ کی حفاظت اور آپ کی سواری کی حفاظت کے لیے آپ کو نشاندہیاں ملتی ہیں لکیروں کے ذریعے, اشاروں کے ذریعے. چمکدار اندھیرے میں چمکنے والی لائٹوں کے ذریعے, سٹیکر کے ذریعے. راستے میں دیوار ہے کہ آپ اپنی سپیڈ سے جا رہے, کوئی آ کے آپ کو متاثر نہیں کرے گا. اگر آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں سے سلائڈنگ ہوتی ہے, پتھر اوپر سے گر رہے ہیں, ایک فوٹو دکھایا جا رہا ہے. جانور گزرتے ہیں تو باقاعدہ جانور کی تصویر کھڑی ہوتی ہے, احتیاط سے یہاں سے جانور گزر سکتے ہیں. قدم قدم پہ سلامتی, صحت اور عافیت سے گھر پہنچنا اور سلامتی اور صحت کے ساتھ سفر کا طے ہونا. میں بازو کا سوچتا ہوں, سفر کرتا ہوں, زندگی گزر گئی سفر کرتے کرتے, یہ موٹر وے پر سفر کر رہا ہوں, اشارے بتا رہے ہیں, لکیریں بتا رہی ہیں, راہیں بتا رہی ہیں, آنے والا بورڈ لکھا بتا رہا ہے کہ ہم نے یہاں سے اترنا ہے یا کہاں سے اترنا ہے. آپ لاہور کی رنگ روڈ کو دیکھ لیں, سفر کو آسان بنا دیا اور محفوظ بنا دیا. دو لفظ میں کہہ رہا ہوں, ساری موٹر وے کا, اشاروں کا, قانون کا نچوڑ سفر کو آسان بنا دیا اور محفوظ بنا دیا. کہ آپ سفر میں بھٹکے نہیں, جہاں اترنا ہے وہیں آپ کو سڑکیں اور اس کا لکھا ہوا بورڈ اور نظام وہیں اتارے. اور آسان بنا دیا کہ آپ اپنی ایک مخصوص رفتار سے جا رہے ہیں اور مخصوص رفتار قدم قدم پہ آپ کی رہبری رہنمائی کر رہی. ایک نووارد بھی اپنی منزل پہ اس لیے پہنچ جاتا ہے کہ اسے جگہ جگہ لکھے ہوئے نشان اور بورڈ رہنمائیاں دیتے ہیں, راستے دیتے ہیں. آسان اور محفوظ سفر کا نام موٹر وے رکھا گیا, آسان اور محفوظ سفر اس کا نام رکھا گیا. زندگی میں اسلام ایک موٹر وے ہے جو کہ آسان اور محفوظ سفر میں ہماری راہیں, ہمیں منزلیں دیتا ہے, ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی دیتا ہے کہ ہمارا سفر آسان گزرے اور محفوظ گزرے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے, ایسا دھرم ہے جو ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی دیتا ہے, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے راستے دیتا ہے, منزلیں دیتا ہے, حفاظت کا نظام دیتا ہے, حفاظت کا سامان دیتا ہے. کوئی لوٹنے والا ہمیں نہ لوٹ لے, کوئی چھیننے والا ہم سے کوئی چھین نہ لے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. ہمارا سوار بھی محفوظ, سواری بھی محفوظ. سوار روح, سواری جسم. سوار کیا ہے؟ روح. اور سواری جسم. سوار بھی محفوظ اور سواری بھی محفوظ. ہم ایسے بالکل مامون اور محفوظ اپنی منزل پہ پہنچیں, حفاظت بھی اور سہولت بھی. موٹر وے دو چیزوں کا نام, حفاظت بھی اور سہولت. اور یہ شریعت کی موٹر وے ہے, اسے کہتے ہیں شارع علیہ الصلوۃ والسلام. شریعت کی موٹر وے ہے, وہ بھی حفاظت سے اور سہولت سے ہمیں منزل تک پہنچائے اور ہماری منزل رب، جنت اعلی درجات، سجے ہوئے تاج اور مرصع کمرے، یاقوت زمرد یاقوت مرجان، زعفران، مشک اور اعلی کمال کی نعمتیں ہماری منزل ہے جو انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ راستہ سہولت والا بھی ہو اور محفوظ بھی ہو۔ سہولت والا بھی ہو اور محفوظ بھی ہو۔ ایسا راستہ ہو جس میں سہولت ہو اور ایسا راستہ ہو جو محفوظ ہو، وہ کیسے ممکن ہے؟ میں چند دنوں سے جس طرف جاتے ہیں اس طرف جانے دو، اس طرف سے جانے دو، ذہنی معذور ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کو صحت عافیت عطا۔ میں چند دنوں سے کچھ لفظوں پہ ایسے مسلسل جو ہے نا، ایسے کچھ لفظ ہیں جو میرے ذہن پہ بھٹک رہے ہیں اور مجھے جھٹکے دے رہے ہیں اور مجھے متوجہ کر رہے ہیں۔ قدم قدم پہ ماشاء اللہ کیوں کہا جاتا ہے، تبارک اللہ کیوں کہا جاتا ہے، انشاء اللہ کیوں کہا جاتا ہے، جزاک اللہ کیوں کہا جاتا ہے، ہر موقع کی ایک دعا ہے ماشاء اللہ۔ کسی کو دیکھا اعلیٰ نعمت میں، اعلیٰ چیزوں میں، رزق میں، مال میں، چیزوں میں، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ کوئی منزل، کوئی کمال، کوئی چیز، کوئی وعدہ، کوئی ارادہ، انشاءاللہ۔ کسی نے کوئی خدمت کی، کوئی ہمارے ساتھ احسان کیا، جزاک اللہ۔ یہ الفاظ کیوں ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ 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 اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ انشاءاللہ، کیوں ہیں؟ ایسے میں سوچتا رہتا ہوں، دیوانہ ہوں نا، یہ کیوں ہے؟ پھر میرے ذہن میں آیا کہ تو نے تاریخ موٹر وے پہ سفر کیا، ہاں کئی بار کیا، لگا یہ موٹر وے کے اشارے ہیں جو ہمیں منزلیں دے رہے۔ اگر آپ بھٹک جائیں، گاڑی خراب ہو جائے، اس نمبر پہ کال کریں، فوراً ورکشاپ آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، وہ کہنے لگے جس سے دشمنی کرنی ہو اسے پرانی گاڑی دے دو، سیاست پہ لگا دو اور نشے پہ لگا دو۔ ہمارے ایک چودھری صاحب تھے، پرانے ارائی تھے، تو وہ بڑے تجربہ کار تھے، بڑی عجیب باتیں کرتے تھے۔ کہ جس سے دشمنی کرنی ہو اس کو پرانی گاڑی دے دو، یا نشے پہ لگا دو، یا پھر سیاست پہ لگا دو، کافی ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے کال کی، ورکشاپ آ گئی، انہوں نے اس کی بیلٹ کمزور ہے، انہوں نے نئی بیلٹ ڈال دی، اتنے پیسے ہیں، گاڑی چل پڑی۔ میں سوچنے لگا کہ ہمیں منزل منزل پہ، قدم قدم پہ شریعت اور دین ہماری رہبری کرتا ہے۔ ہماری شریعت اور ہمارا دین ہماری رہبری کر رہا، قدم قدم پہ، منزل منزل پہ۔ تو اب پتا چلا کہ الفاظ یہ ایسے نہیں ہیں، یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں۔ اصل میں ہم ہیں سرمایہ دار، ایمان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہے۔ ہمارا فقیر سے فقیر، ہمارا تنگ دست سے تنگ دست، ہمارا مفلس سے مفلس، دنیا کا جس کے پیٹ پہ شاید پتھر بندے ہوں، آج کل پتھر کہاں، جو کہتے ہیں میں دنیا کا آخری غریب ہوں، وہ اصل میں آخری سرمایہ دار ہے۔ ساری دنیا کی دولت مل جائے، ایمان نہ ملے، کائنات کا ذرہ نہ ملا، اور ساری دنیا کی دولت نہ ملے، اس کو ایمان ملا، کائنات کا مالدار ہے۔ اس لیے فرمایا، میں بات جو کر رہا ہوں اس بات پہ رہیے گا، اصل میں اپنے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ میں یہاں رہوں، کہ ہم اصل میں سرمایہ دار ہیں، ہمیں لوٹنے کا خطرہ ہے، اور ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، حدیث قدسی، بہت اونچی حدیث جو ہو نا، آخری درجے کی، ٹاپ آف دی لسٹ جو حدیث، جس کو میرا اللہ خود بیان کرے، حدیث قدسی ہے کہ میں جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ मेरे किसी दोस्त से बोझ रखे, नफरत रखे, बदगुमानी रखे, शक रखे, दुश्मनी रखे, शक, बदगुमानी, वसवसे, तो मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। एक शख्स था जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गालियां देता था, बुरा भला कहता था, तो उसका ईमान छिन गया और वो मुर्तद हो गया। तो किसी ने पूछा, हजरत आपने उसके लिए बद्दुआ की? मैं नहीं, मैंने उसको बद्दुआ नहीं की, असल में मेरी अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से मेरी दोस्ती है, मेरी है अल्लाह से मोहब्बत और दोस्ती, और अल्लाह पाक को गुस्सा आया और अल्लाह ने इसकी सबसे कीमती चीज छीनी, वो ईमान था। मिसाल दी, जब बादशाह किसी नगरी पे, किसी बादशाहत पे कब्जा करता है, हमला करता है, और जब वहां काबिज हो जाता है तो सबसे पहले जिस चीज को अपने कब्जे में लेता है वो खजाना होता है। तो मेरा अल्लाह सबसे पहले जो चीज छीनता है वह ईमान छीनता है। तो मेरे वली से दुश्मनी की है, बोझ रखता है, नफरत की है, एतराज किया है, अल्लाह सबसे पहले वह चीज छीन लेता है। मुझे 2-3 दिन से कुछ एक दुख है, हमारे पड़ोस में हमारे एक पड़ोसी फौत हुए, उनकी मैयत यहां आई है, वो कभी नहीं आए, उनकी जनाजा यहीं हुआ है। नेक आदमी थे, शरीफ आदमी थे, कहते रहता था क्या कभी आ जाए यहां, मैं सफर में था, मेरे दर्श थे मुसलसल, पता चला कि यहां जनाजा हुआ, उनकी मैयत यहां आई, वो कभी नहीं आए, सात दीवार के सात दीवार। उस दिन से दुख है, ऐसी तबीयत मेरी है, बोझल बोझल सी है, मैं उनको पढ़ पढ़ के हदिया दे रहा हूं आमाल का, पड़ोसी थे उनका हक था, मेरे ऊपर हक है, मेरी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले उसके जो हमला होता है उसके खजाने पे होता है, उसका खजाना उससे छीन लिया जाता है। शेख अल-हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम सबक था एक साथ, हम दो तालिबे इल्म थे जो जरा क्लास में ज्यादा पढ़ने वाले थे ज्यादा, तो उस्ताद से पढ़ते भी थे, सवाल भी होता था, उस्ताद के हर सवाल का बेहतरीन जवाब भी देते थे, उस्ताद हमारी रियायत करते थे, और यह रियायत यह करते थे अगर हम में से किसी को कोई अचानक सख्त मजबूरी की कोई हाजत हो भी जाती थी तो उस्ताद उस वक्त के लिए सबक मौकूफ कर देते थे, यानी उसमें डिले कर लेते थे, सबक छोड़ देते थे कि जब तक ये नहीं आएंगे मैं सबक नहीं पढ़ाऊंगा। एक तालिब इल्म था ऐसा जो हमारी उस्ताद की इस अदा पे अक्सर एतराज करता रहता था, और बाज़ औक़ात उस्ताद भी एतराज करता था। मुर्शिद जिस जिंदगी के जिस शोबे पे लगा दे उसमें खैर है, अब उस पर एतराज करने वाला हमेशा खता उठाता है, और खताओं की मुख्तलिफ शक्लें हैं, खताओं की मुख्तलिफ शक्लें हैं और सजाओं की मुख्तलिफ शक्लें हैं, और सजा उठाता है और वह एतराज करता रहता था। एक दफा उस्ताद मोहतरम कैफियत में बैठे थे, फकीर की कैफियत कभी मुंह से निकल जाए तो फिर हो जाता है, मतलब पागल, पगला तो पागल दीवाना है, और हर वक्त यही कहते रहते हैं, पढ़ने वाले हैं, यही तो मेरे दो क्लास के हीरे हैं, लाला दी जोड़ी, यही तो हीरे हैं, लाल जोड़ी होती है हमेशा, हजरत शेखैन जोड़ी सात रोजे में सोई हुई है, यही तो है मेरे बस मुंह से निकल गया, मुंह से निकल गया, अल्लाह के वली की बात थी, मुंह से निकल गया। वह कुछ अरसे के बाद वो पागल हो गया और कपड़े फटे हुए, गंदगी कपड़ों पे लगी हुई, पाकी ना पाकी का कोई पता नहीं, बाल सर के, दाढ़ी के, मूंछों के बढ़े हुए, काने के ऊपर काना नहीं होता जिसकी चिके बनती हैं, सरकंडा काना, इसके ऊपर मरा हुआ कौवा लटकाए, गलियों में फिरता था कि मैं फतवा देता हूं ये हलाल है, मैं कहता हूं ये जायज है, कौन कहता है ये हराम है, कौवा इसको खाना चाहिए, पागल हो गया। तो सबसे कीमती चीज, मैं फिर किसी और मौजू पे चला जाऊंगा, फिर अब इस इन वाकियात की मेरे पर आमद शुरू हो गई। तो हम चाहते हैं सफर महफूज भी हो और उसमें सहूलत भी हो, तो मोटरवे हमें कदम कदम पे हमारी निशानदेही करता है, मोटरवे कदम कदम पे हमें निशानदेही देता है कि देखो अगर सफर महफूज चाहते हो और पुरसकून चाहते हो, सहूलत, तो ये फिर इशारे हैं, ये मंजिलें हैं, यहां से बच के रहना, गाड़ी टकरा सकती है, यहां स्पीड जरा आहिस्ता करना, हत्ता के यहां तक यहां तेज हवा चलती है, यहां एहतियात करना, मैंने मोटरवे पे ये भी लिखा हुआ देखा, यहां हवाएं तेज चलती हैं, टकरा सकते हैं, आपकी गाड़ी को, आपकी सवारी को कोई चीज नुकसान दे सकती है। हम मालदार हैं, हमें कदम कदम पे कोई चीजें मुतासिर कर रही और करेंगी, कदम कदम, ये कदम कदम बलाएं, ये सौदाए कुएं जाना, ये कदम कदम बलाएं, ये सौदाए कुएं जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। ये किसी फकीर के साथ चलने का एक गुर बताया गया है, अगर किसी को इसी शेर की समझ आ जाए ना, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये कदम कदम बलाएं, ना कवारियां, खिदमत ना गवारी के बगैर। मैं उस दिन सफर में था, पता नहीं सखर में था, ट्रेन में बैठा हुआ था, मैं मुल्तान से ट्रेन में बैठा खैबर मेल में, पता नहीं कहां बैठा हुआ था, तो मैंने कुछ साथियों को जमा किया, मैंने कहा देखो सोहबत, सोहबत और खिदमत, किसी फकीर की सोहबत और खिदमत ना गवारियों के बगैर आ नहीं सकती, हो नहीं सकती, ना गवारी, कभी क्या मिजाज से चीज टकराएगी, कभी तबीयत से क्या टकराएगी, कभी मिजाज से क्या चीज टकराएगी, कभी क्या, कभी क्या, कभी तबीयत टूटेगी, कभी दिल टूटेगा, कभी कहेगा उसे अहमियत दी मुझे अहमियत नहीं दी, उसे तवज्जो दी मुझे तवज्जो नहीं दी, उसे हाथ मिलाया मुझे हाथ नहीं मिलाया, खाने में बैठे तो उसको बोटी उठा के दी, रोटी उठा के दी, मुझे नहीं दी, पता नहीं कदम कदम, ये कदम कदम बलाए, ये सौदाए कुए जाना, वाह यार की गली का सौदाई पागल, अगर बलाएं आए तो फिर पागल बन जाए यार की गली का, कूचे का, सौदाए कुए जाना, जाना महबूब की गली में फिरता है, महबूब की गली में, मैं तो कूंज मांगो कुरलावा, मैं तो कूंज मांगो कुरलावा, उचे कोठे ते चढ़ देखा, उचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा, लम्हा देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिल सेम के मर वे सब, क्या कमाल है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का आरफाना कलाम मैंने पढ़ा, ऊंचे कोठे पे चढ़ देखा, यार की तलाश है तो ऊंचे कोठे पे चढ़ के देखो, डठी दिल को देवा टेका, दिल फिर कहते नहीं मिलेगा, फिर टेक देता हूं कि नहीं नहीं यार मिलेगा, डठी दिल को देवा टेका, टेक स्पोर्ट, डठी दिल को देवा टेका, उभा देखा लम्हा देखा, मशरिक देखूं मगरिब देखूं शिमाल देखूं जनूब देखूं इधर देखूं उधर देखूं, उभा देखा लम्हा देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिलसिम के मर वैसा, पता नहीं यार मिलेगा या ऐसी मौत है, इसी तमन्ना में उम्र गुजरी कि यार हमसे तो आ मिलेगा, इसी तमन्ना में उम्र गुजरी कि यार हमसे तो आ मिलेगा, न हमने जाना कि वसल क्या है, न हम ये समझे विशाल क्या है, कोई पता नहीं, बस यार की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बत है, उसके इश्क में चल रहे हैं। तो हम सरमायेदार हैं, हमें जगह जाकर कोई चीज लूट सकती है, शैतानी चीजें, जिन्नाती चीजें, और लूट रही हैं, लूट रही हैं, और हम लूटे हुए हैं, और हमें पता नहीं कि हम में से हर फर्द मुझ समेत लूटा हुआ है, हर फर्द मुझ समेत लूटा हुआ है, और हमें पता नहीं हम कितने लूटे गए हैं। मुझे अभी चंद दिन पहले एक साहब कहने लगे कि आपने जब से जिन्नात की दुनिया को खोलना शुरू किया है, एहसास हुआ है कि मसनून दुआएं क्यों पढ़ी जाती थी। कहने लगे आपने जिन्नात की दुनिया को खोल के मसनून दुआओं की अहमियत और फजीलत, उसने कोई और लफ्ज कहा था अहमियत के साथ, कहने लगे हमारे दिल में आ गई, एहसास हुआ है ऐसे नहीं है। हम जिन्नात को जानते थे, मानते थे, यकीन था, जिन्नात का हमारी जिंदगी में इतना गहरा अमल दखल। कहने लगे जब यह पता चला, फिर मसनून दुआओं की ताकत तासीर का पता चला कि ओहो, ये कदम कदम पे मसनून दुआएं मेरे मदीने वाले के फरमान और बोल और सुनहरी बोल ऐसे क्यों हैं? आले रसूल के ये फरमान, असहाब रसूल के ये फरमान, आले नबी के ये बातें ऐसी क्यों हैं? और औलिया अल्लाह ने, सालेहीन ने क्यों ये मंजिलें हमें दी हैं? फिर पता चला, और इसकी अहमियत और इफादियत और फायदे का एहसास हुआ। ये कदम कदम बलाएं, ये सौदाए कुए जाना, नागवारियां, सोहबत के बगैर नागवारियां नहीं। मैं बैठा हुआ था एक दरवेश साईं अब्दुल जब्बार साहब के पास, उन्होंने कहा जी सब बाहर चले जाए। मैंने ऐसे झांका, एक साहब खड़े थे, थोड़ी देर तक आके बैठे हुए थे। जब देखे उनकी तवज्जोहात में तकद्दर पैदा हुआ, वो जो तवज्जोहात मिल रही थी, एकदम खलल पैदा हुआ कि उस बंदे को कहते थे ये बाहर रहे। मैंने इशारा किया बाहर चले जाना, बाहर चला गया। मैंने बाद में अर्ज किया, मैंने कहा या यकीन कर लो या फिर वो कैफियत ले आओ। मैंने ये महसूस किया उनकी तवज्जोहात मिल रही थी। उन्होंने मुझे सामने कुर्सी में बिठाया, कुर्सी पहले से रखी हुई थी, सबको कहा बाहर चले जाए। थोड़ी सी दरवाजे की झांक थी, अंदर आके बैठ गए, मुझे पता ना चला। मुझे एकदम एहसास हुआ कि तवज्जोहात में थोड़ा सा खलल पड़ा है। चलो इसकी मिसाल देता हूं। एक साहब का मैंने झगड़ा देखा, वो पंखे का रुख अपनी तरफ करे, वो अब फेर के यूं कर ले, पेडिस्टल फैन नहीं होता, चलो अब तो समझ आएगी ना, वो फिर यूं कर ले, फिर यूं कर ले, झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई। वो कहे पंखा मेरी तरफ, वो कहे मेरी तरफ, आखिर तीसरे ने कहा कि इसकी ऊपर उसने फिरकी पे हाथ मारा, इसने कहा सबकी तरफ हवा आए, चुप करके बैठ जाओ। अब पंखे की हवा अगर कम हो एहसास होता है, नहीं होता? होता है। एसी की हवा के सामने बैठते जिस तरफ उसका रुख होता है, ठंडी हवा निकल रही, इसका एहसास तो होता है। जब मन ऐसा हसास हो जाएगा, फिर तवज्जोहात का भी एहसास होगा, तवज्जोहात का एहसास होगा, होता है, मिलती है, और तवज्जोहात लुटती भी है, और तवज्जोहात छिनती भी है। ये उस वक्त है जब अंदर कोई चीज हो, मिलती भी है, छिनती भी है, अता भी होती है। मैंने उनसे कहा आप जरा बाहर चले जाए, फिर उन्होंने मेरी बात मानी, बाहर चले गए। फिर मैंने उनको बिठाया और यह बात कही, मैंने कहा याद रखना सोहबत और खिदमत दो वाहिद चीजें हैं, किसी फकीर की सोहबत, मुझ जैसा फकीर, या कोई अल्लाह वाला, मैं किसी अल्लाह वाले का गुलाम हूं, अल्लाह वाला नहीं हूं, अल्लाह बना दे, या कोई वली या सहाबा, अहले बैत, औलिया, सालेहीन। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को जो वसीयतें की हैं उमर रजी अल्लाह तआला की सोहबत में बैठने की, मैं पढ़ता गया हैरान हुआ, बेटा ख्याल करना بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کے رازداری کا خیال کرنا، بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کے پرائیویسی کا خیال رکھنا، بیٹا خیال کرنا ان سے گفتگو کرتے ہوئے۔ حضرت عباس نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے بہت بڑے محدث ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، اس امت کا احسان ہے، اس امت کے اوپر ان کا احسان ہے، اتنا انہوں نے علم دیا ہے تفسیر کا، ایمان کا، فقہ کا، پتہ نہیں کیا، ان کی باقاعدہ نصیحتیں ہیں والد کی، کیونکہ ان کو چھوٹی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحبت میں لے لیا تھا، چھوٹی عمر میں اپنی صحبت میں لے لیا تھا آل رسول ہونے کی نسبت سے، باقاعدہ نصیحتیں ہیں، بیٹا خیال کرنا، اس کی احتیاط کرنا، اس چیز کی احتیاط کرنا، اس چیز کی، اپنی زندگی کے تجربات۔ حضرت عباس بہت بڑی ہستی تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت باوقار ایک سردار تھے، آقا تھے، آل رسول کے جہاں بڑے تھے وہاں معاشرے کے بہت بڑے عظیم انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنے تجربات بیٹے میں منتقل کیے، بیٹا خیال کرنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں، صحبت کسی فقیر کی اور خدمت، یہ ناگواری کے بغیر مل ہی نہیں سکتے، اور جو ناگواریوں کو برداشت کرتا چلا گیا اور چلتا گیا، رب اس سے کام لے گا۔ آج اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے کچھ ناگواریاں میرے ساتھ بھی ہیں، اللہ مجھے اس کا اہل بنا دے۔ میں کوئی اپنے آپ کو نہیں کہتا جنات میرے تابع ہیں، میں کوئی پہنچی سرکار ہوں، مجھے کشف ہوتا ہے، میں ولی ہوں، لیکن ناگواریوں کی بات کر رہا ہوں، بہت سی ناگواریوں سے نکلا ہوں اور ابھی بھی نکل رہا ہوں، ناگواریاں ہیں، یہ خدمت ہے نا، یہ جو میں تسبیح خانے کی خدمت میرے ذمے ہے، یہ خدمت ہے، تو یہ خدمت ناگواریوں کے بغیر ہے، اب بھی ناگواریاں میرے ساتھ ہیں، اور میں نے اپنے بڑوں کی چار دن صحبت میں کوشش کی، اپنے ساتھیوں کی صحبت اب بھی میں چل رہا ہوں، آپ حضرات کی صحبت میں میں چل رہا ہوں، تو مجھے اب بھی صحبت میں ناگواریاں ملتی ہیں، اور ان ناگواریوں کو آپ کو میری وجہ سے ملتی ہوں گی یقیناً، اب بھی میں اس ناگواریوں کے ساتھ چل رہا ہوں۔ خدمت اور صحبت کسی فقیر کی، آپ کہیں ناگواریاں اس میں شامل نہ ہوں، ہو ہی نہیں سکتا، جس وقت ناگواری آتی ہے یہی بندہ ٹوٹتا ہے، اور پھر اس خدمت کو مانگتا رہتا ہے، ترستا رہتا ہے کہ مجھے وہ خدمت مل جائے، پھر وہ ہک تل چکی سو چوٹ کھاوے وہ ویلا ور ہت نہ آوے، ہک تل چکی سو چوٹ کھاوے، ایک تل تھا بس چوک گیا، پھر اب سو چوٹ کھا رہا، وہ ویلا والا ہاتھ نہ آوے، وہی ویلا پھر ہاتھ نہ آیا، وہی ویلا وہی وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اسی فقیر کی توجہات میری آپ کی ضرورت ہے، اور بعض اوقات بعض فقیر دیکھتے ہیں اس بندے کے ذمے اتنا مجمع ہے، اس کو توجہات دے کے بھیجو۔ میں ایک جگہ نا، یہ خانپور نہر جہاں حجویری محل ہے نا، آج سے کوئی بہت سال بہت پرانی ہے، مجھے تو گمان ہی نہیں ہے اللہ پاک یہاں حجویری محل بنوائے گا، میں تو احمد پور سے آیا یہاں آیا، لمبی کہانی ہے، میں نے ایک بہت بڑے حلوہ پکایا، تو ایک بچی مجھے کہنے لگی وے پیرا میرے ویر نہیں بھی دے دے، اور تین چار تھالیاں پانچ چھ تھالیاں، طے تھا کہ ہر بندہ ایک تھالی لے کر آئے گا، اس کے ساتھ تین چار پانچ چھ تھالیاں تھیں، اے میرے ویر لئی، اے میری اما لئی، اے میرے ابے لئی، میں دیکھوں اس کو، اچھا میں ڈالی بھی جاؤں۔ جو سخی ہوتا ہے وہ فیملی دیکھ کے راشن دیتا ہے، فنڈ دیتا ہے، مال دیتا ہے، روٹیاں دیتا ہے، فیملی دیکھ کے نا، ہاں بھائی تیرے کتنا بڑے، انہیں کہ اتنے، اچھا اس کو اتنا دے دو۔ وہ فقیر اگر کسی کو توجہ دیتا ہے تو فیملی دیکھ کے دیتا ہے، اس کی فیملی کتنی بڑی تسبیح خانے کی فیملی ہے، اور پوری دنیا میں کتنی بڑی تسبیح خانے کا نظام ہے، کیا خیال ہے؟ फैमिली देख के देता है। बाज औकात किसी अल्लाह वाले के पास लोग समझते हम गए कुछ नहीं लेके आए। मैं कहता हूं बाज औकात वो दुर्वेश तवज्जोहात देख के नवाज देता है और वो तवज्जोहात बहुत बड़ा खजाना होते हैं। खाली नहीं लौटाता फकीर, तवज्जोहात देके, तवज्जोहात देके। बाद लोग कहते हैं जी हाथ उठाएं, मैं कहता हूं किसी फकीर को हाथ उठाने के लिए मजबूर ना करना, बस दुआओं का अर्ज कर देना। तवज्जोहात ही दुआएं होती हैं, कायनात का सरमाया होते हैं, और उसी से उन्हें पता है कि इसके साथ इतना बड़ा मजमा है और बर्तन भांडा खाली है, इसको दे दो, हमारे पास भी अमानत है। अपना बर्तन भांडा खाली है, इसका मजमा इतना साथ लगा हुआ है, इसको दे दो ताकि बांटता रहे। वो मैं उस वक्त वो बैठा ले रहा था, मुझे मेरी पीठ थी, मुझे पता नहीं कोई आके बैठा है, मुझे एकदम एहसास हुआ कि ऐसे सब लहरें खत्म, पंखे करो, पेडेस्टल फैन का उठा के किसी ने एक तरफ कर दिया। अब मुझे जो गर्मी लगी, देखा कोई बंदा आया बैठा, चुप करके आके बैठ, मैं कहा बाहर चले जा। फिर वह सिलसिला शुरू हो गया, नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की जेरो जबर करे है। ये शेर आज समझ आया आपको? कई दफा पढ़ा, नैनों का तेरे काजल, आंखें पिलाती भी हैं, आंखों से पीता भी है, दिल से पीते भी हैं, दिल से पिलाते भी हैं, जामे उल्फत। हां, दिल पीता भी है, दिल से पी भी जाती है, आंखों से ही पी जाती है। नैनू का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की जेरो जबर करे है। एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। तवज्जोहात की कोशिश किया करे, मैं इतना मोहताज हूं। ये मैं आपको अपनी अपनी न होने की कैफियत बता रहा हूं और वजाबाजी कर रहा हूं कि मैं कितना बड़ा मोहताज हूं और मेरा अंदर कितना खाली है कि मैं उनके तवज्जोहात ले रहा था और वो दुर्वेश मुझे तवज्जो दे रहे थे और मुझे एहसास हुआ कि खलल पड़ गया, किसी ने पेडेस्टल फैन एक तरफ कर दिया, आया और तवज्जोहात हट गई। ये मैं आपको कहानी जो सुना रहा हूं, इस कहानी के अंदर मेरी विलायत नहीं झांक रही, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी तलब और मेरा अंदर का हाना झांक रहा है कि मुझे अंदर कितनी किसी फकीर की जरूरत है और आप हजरात की तवज्जोहात की मुझे कितनी जरूरत है। मुझे कई बंदे कहते हैं कि हम बंदों को लेके आए, अपने दिल के सवाल लिख के आओ, हमारा मुर्शिद तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे देगा। ये शर्तें लगती हैं तस्बीह खाने में। मुझे कई लोगों ने कहा तस्बीह खाने में बकायदा शर्तें लगती हैं, तू अपने दिल के सवाल लिख, तेरे दर्स में हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये आपकी तवज्जोहात मुझे मिल रही है, ये और वो तवज्जो मुझे मिल रही, अल्लाह मेरी जुबान को, ये मैं बाईपास से जो इधर उधर निकल जाता हूं ना, बाजों का कहता हूं जय लई गली और चली, इधर उधर निकल जाता हूं मजमून से हटके, फिर वापस भाग के मजमून की तरफ आता हूं। ये वो लोगों की तवज्जोहात हैं जो अल्लाह मेरे मजामीन मेरी जुबान पे ला रहा, मैं तो अब भी आपकी तवज्जोहात का मोहताज हूं। मजमे की तवज्जोहात मिलती है, आपका क्या ख्याल है? चलो मैं आपको एक चीज बता, पता नहीं मैं कहां से निकला, मैंने तो कोई और बात करनी थी। चलो मैं एक चीज बताता हूं, आप सिर्फ एक काम करें, एक बंदे को टिकटिकी बांध के देखते रहें, ऐसे देखते रहें, खैरियत तो क्या हुआ? हाँ, मैंने एक दफा पुराना सफर कर रहा था, मैंने कहा भाई इस बंदे को तवज्जो देनी है। मैं टिकटिकी बांध के उसका देखता रहा, पहले हम लाउंज में बैठे थे, देखता रहा। कोर कमांडर था जनरल ताहिर अली कुरैशी, 31 कोर का कोर कमांडर, हम एक जहाज में थे, भावलपुर से लाहौर आना था, इस्लामाबाद जाना था। जहाज ने फोकर था पुराना, उसने लाहौर को टच करना था फिर इस्लामाबाद जाना था, और मैंने इस्लामाबाद जाना था, नहीं लाहौर आना था, इस्लामाबाद फिर मैं जाता था। मैंने, मुझे पता चला, मेरा उससे कोई तारफ नहीं था और मेरा उससे काम भी कोई नहीं था। उसके बाद फिर मुलाकात भी कोई नहीं हुई। वो उस वक्त 31 कोर का कोर कमांडर था, वीआईपी लाउंज में बैठा हुआ था, मुझे भी वहां बिठा दिया गया। अच्छा, मैंने, मुझे किसी ने, मैं कौन है ये? उसने, जी कोर कमांडर 31 जनरल ताहिर अली कुरैशी, शरीफ आदमी था, नेक आदमी था, दिल इस्माइल खान का था। मैंने कहा भाई इस पे तवज्जो करनी। मैं तवज्जो करता रहा और अमाल करता रहा, करता रहा, करता रहा। एक दफा उसने मुझे ऐसे देखा, ऐसे देख के फिर अपने, उसने कुर्सी से ऐसे टेक लगाई हुई थी, सर लगाया हुआ था, और जिसने बंदा थका हुआ होता है और सुकून लेना चाहता है ऐसे सर लगाया हुआ था। मैं उस पर तवज्जो करता रहा, देखता रहा, देखता रहा। अभी आप सिर्फ देखना, आप किसी को सिर्फ देखते रहे, बंदे को हिला के रख देंगे। और जब मुझे इतने बंदे जो आप देख रहे हैं और कैमरे की आंखों से वर्ल्ड देख रहा है, मुझे कोई तवज्जो ऐसा नहीं कर रहे, तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब भी आपकी तवज्जो का मोहताज हूं। मैं तो इतना छोटा आदमी हूं। तो करता रहा, फिर जहाज में बैठ गया। ये बात है कोई 2001 की दो की गालिब, क्योंकि ये यही लोग थे जिन्होंने मुशरफ के लिए सारा, तो 2001 दो की गालिबन कौन बेशी इसी के दौरान की बात है, ये उससे आगे पीछे। तो अच्छा, वो जहाज में बैठ गया, कुदरती ऐसा हुआ कि वो अगली सीट बैठा। फोकर के दरमियान में ना एक सीट होती है जो चौड़ी होती, कुशादा होती है, उसको वहां बैठाया गया, मैं उससे पिछली सीट बैठा। मैंने पता नहीं क्या मुझे दिविदान हो गया, मैंने कहा इसको टारगेट करना है। फिर तवज्जो दी, देखता रहा, तवज्जो देता रहा, देता रहा। लंगर सामने आया, मैंने वो भी नहीं खाया, जहाज में मिलता था, पहले सौखा लंगर मिलता था, अब तो चिड़िया भी ना उस बेचारे की। एक दफा जहाज में झगड़ा हो गया हज पे, देहाती बंदे थे, उन्होंने छोटा सा दे दिया, कह रहे भाई होर दे, मैं पैसे देते नहीं। हाँ, और माई कहे इतना मिलता है, और कह रहे मैं तो पैसे देते नहीं, मेरा ढेर नहीं भरा, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और दे। अच्छा, वहां गए ना, अब जहाज उतरा, सीढ़ी लगी रनवे पे, सीढ़ी जो लगी ना, तो भाई इस बंदे के पांव पड़ जाओ, और किसी की नहीं मानता, उसके पांव पड़ जाओ, देखो इसके पांव पड़ जाओ, इसकी मिन्नत करो। वो कहता है खड़े होकर मेरी बात सुन ले, आप बताओ मैं 10 करूं या 10 सुन। भाई बाहर चला जा, वहां कुर्सी पड़ी है, यहां कुर्सी नहीं है। देखें, एक बंदा सारे मजमे को, मेरे मजमून को मुतासर कर रहा है। देखो, अब कहेंगे हकीम तारिक मगरूर है, मुतकब्बिर है। आओ कहते वी दिन हो गया, मैं थोड़ा पता करना पे। अब बोलो अल्लाह वाले, ख्याल कर भाई, कोई ख्याल कर भाई, कोई ताकत वाला बंदा है इसे उठा के इसको ले जाए, है कोई? उठाओ, शाबाश, ले जाओ इसको, प्यार मोहब्बत से ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। हाँ, साथ अब मेरी तरफ तवज्जो करें बस। एयरपोर्ट पे उतरे ना, तो उसको पहले उतारा गया, वीआईपी पहले उतरा, उतर के मुझे ऐसे देखा, जवान क्या हाल है? ठीक। मैंने कोई आगे बढ़ के सलाम नहीं किया, सर सलाम वालेकुम, क्या हाल? जी ठीक। ऐसे कहने लगे हाथ ही नहीं मिलाते। मैंने हाथ मिलाया तो फौजियों वाला ऐसे हाथ झटके से मिलाया और मेरा हाथ पकड़ लिया, और उनके साथ बंदे थे, उन्हें लेने आए हुए थे, हटो बचो का निजाम था। अब मेरे साथ क्या हाल है, कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं आपके साथ शहर में रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? हकीम यार, कभी कोई गाजर का मुरब्बा ही खिलाओ। मैंने कहा आप फौजी हैं, मेरा चीज भेजूंगा, मैं तो फकीर सफेद पोश आदमी। आप कहेंगे ठीक नहीं है, बड़ों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं नखरे में आ गया। कह रहे कौन सा बड़ा हूं मैं, कहने लगे मैं डरा इस्माइल खान दा हां सराय की बोले ना, चलो मैं क्या वाली यारी लग गई। मैंने सिर्फ तवज्जो दी, उसके बाद फिर चंद मुलाकातें हुई उनके साथ, मेरी आप मुझे देख रहे ऐसे देख रहे, ये सिर्फ देखना ही है, इस देखने का असर होता है। और अगर किसी फकीर के तवज्जोहात दिल में मिली हुई हो तो उसकी मिसाल ऐसे है, कुआं है पर भरा हुआ है। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे, याद रखना, कहां मौजू से कहां निकल गया, एक बात फरमाते थे अपने दिल के मटके को तन्हाइयों में और तवज्जो शेख में इतना भरना के छलकता हुआ लोगों को देना, अपना मटका खाली ना करना, छलकता हुआ देना, छलकता हुआ वो जो बाहर निकले ना वो देना, अपना खाली ना करना। ये तो चीज मिलती तवज्जो से है। हमने एक दोस्ती लगाई थी तरबियत सालिकीन की जमात पे, पर क्या करें पाबंदियां बड़ी सख्त थी। एक पाबंदी ये थी वक्त पे आओ, दूसरा है सोना नहीं है, बस और कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसी सख्त कानून था माशाल्लाह, कोई बंदा बनाएगा अक्ल कर क्या करते हैं। साल साल से मुझे कह रहे थे हजरत कोई ऐसी तरतीब बनाए, मैं आओ सिर्फ सोवो ना तो वक्त पे आओ। उन्होंने कहा ये हमसे नहीं हो सकता, जा अपना काम कर, आज तक इंतजार कर रहा हूं यारों की। आज तक यारों के इंतजार कर रहा हूं, जो कोई हो मुझे तवज्जो देने वाला, मैं तो आज भी आपके तवज्जो का मोहताज हूं। ये अल्लाह की तरफ से तवज्जो होती है आपकी, अल्लाह मेरे मुंह से वो बातें निकलवा देता है, वो मजमून निकलवा देता है, वो बात निकल आती है। वो कहते हैं देखा मेरा मुर्शिद पहुंचा हुआ है ना, वो लिख के ले आप में चुके बैठा है, किसी ने कोई शर्त लगाई हो या कहा हो कि हर सवाल का जवाब मिलता है, कोई बैठा है, बहुत सारे हाथ खड़े। ये सारी दलील आज आपको पता चला, बुनियाद ये है, कश नहीं, आप हजरात की तवज्जो का असर मेरे दिल पे होता है, अल्लाह वो बातें मेरे जुबान पे जारी कर देता है। मैं अर्ज कर रहा था कि हम मालदार हैं, हमें कदम कदम पे लूटने का खतरा है, शैतानी चीजें, जिन्नाती चीजें, ये ऐसी खबीस चीजें जो हमारी अजली दुश्मन हैं। जमीन पे पहले जिन्नात शयातीन रहते थे, शयातीन जिन्नात एक ही चीज है, वो रहते थे, हम बाद में आए। वो ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे साथ वैर है, सिवाय चंद शोराफा के। सारे जिन्नात बुरे नहीं होते, अल्लाह वाले भी होते हैं, उनमें सहाबा भी हैं, उनमें तबा ताबीन, मुहद्दिसीन, फुकहा, अहलुल्लाह, वली, बड़ी बड़ी हस्ती हैं जिन्नात में। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शरीर हैं, खबीस हैं, उनको हमसे अजली वैर है। इसका कई बार इजहार, इसका कई बार इकरार, कई बार हुआ। ये जो हमें बताया जाता है ना कि हमारी जिंदगी के शहरा पे चलते हुए हमें कदम कदम पे माशाल्लाह, जजाकल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ऊपर चढ़ते हुए, नीचे आते हुए सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, ये जो हमें कदम कदम, ये मैं कई दिन से इस बात पे घूम रहा हूं और कदम कदम पे जो अल्लाह पाक का ये नाम का साथ हमें मिलता है, इस साथ पे हैरत अंगेज बरकात मुजस्सर है और हिफाजत का निजाम है, जिसको मैं कह रहा हूं कि मोटरवे का सफर और सहूलत है और महफूज है। वो जिंदगी की जो मोटरवे है और शरीयत की जो मोटरवे है, उसका सफर यही महफूज है। ये लफ्ज, ये बोल, ये अल्फाज, ये मसनून दुआएं, ये अल्लाह का नाम, ये मदीने वाले के नाम, ये दरूद और सलाम, ये चीजें हमें कदम कदम पे हिफाजत के साथ हमारा सफर तय कराती है, कदम कदम पे हिफाजत के साथ हमारा सफर तय कराती है, और कदम कदम पे हमें हिफाजत मिलती है, कदम कदम। एक गाड़ी है 9600-9600 LZF 1173, ये गलत पार्क है, दो गाड़ी, दो, एक 1173 है, एक 9600 है, 9600 एक है 1173। रास्ता बंद है भाई, मेहरबानी करें, तवज्जो करें, इसको जरूर हटा लें। अब कदम कदम पे जो हमें हिफाजत का निजाम है, हम लुटते कहां हैं, हमसे छिनता कहां है निजाम, कहां कहां हम लुटे जाते हैं और कहां कहां हमसे सब कुछ छीना जाता है। एक हदीस मुबारक पर गौर कीजिएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बंदे के साथ एक जिन है, हमजाद है, जिन है। तो साहबा ने अर्ज किया, आका आपके साथ भी? फरमाया हां, मगर मेरे अल्लाह ने उसको उसके मुकाबले में मेरी मदद की और वो मेरा ताबे फरमान हो गया, और अब वो सिर्फ मुझे नेकी का ही मशवरा देता है, लेकिन ये सिर्फ नबी के साथ है। हमारे सब के साथ शयातीन और जिन्नात है, सब के साथ। एक दरवेश है, फरमाते हैं कि एक मरतबा सियालकोट के गांव 1700 में तशरीफ ले गए, पता चला कि वहां के नंबरदार का अकलौता बेटा फालिज में मुब्तला है, ये मैंने आपको बताया भी था। वो खूबसूरत जवान और खुश आवाज था, नंबरदार ने बहुत इलाज किया मगर इफाका ना हुआ। तो उन्होंने, मौलाना गुलाम रसूल साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, इनसे अर्ज किया, मौलाना ने मरीज का नाम पूछा, अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब में जो नाम बताया उसे सुनकर नंबरदार कहने लगा, ये तो मेरे बेटे का नाम है ही नहीं। तो वो दरवेश समझ गए इसे किसी जिन का मसला है, उन्होंने जिन से बातचीत शुरू की, पूछा कि इस जवान को क्यों पकड़े। जिन बोला, एक रात शहरी के वक्त हमारा गुजर इनके खेतों से हुआ तो हम वहां ठहर गए, ये नौजवान बैलों की मदद से कुएं का पानी निकाल रहा था, और इस दौरान इसने निहायत खुशहलानी से चंद अशार गुनगुना रहा था, जवान भी सोना गबरू और आवाज भी खूबसूरत। तो हमारे बादशाह की बेटी इस पर फरेफ्ता आशिक हो गई, शाह जन्नात को गैरत आई, उसने मुझे हुक्म दिया कि इस जवान पर मुसल्लत हो जाओ, इसका जिस्म सुखा सुखा के उसे मौत के मुंह में धकेल दो। अब बेले दास्तान कहां से चली और कहां आई, हमारी अकल में ना आई, सुखा सुखा के इसे मौत के मुंह में धकेल दो। इसलिए मैं अपने बादशाह की तरफ से मामूर हूं, शाह जिन्नात की तरफ से मामूर हूं, मेरी ड्यूटी है। तो शेख ने पूछा, इस वक्त तुम्हारा बादशाह कहां है? उसने कहा कश्मीर में। हजरत ने फौरन कुछ पढ़ा तो वो बादशाह शाह जिन्नात आ गया और उस दरवेश से बातें करने लगा, बिलाखिर उस जवान को छोड़ने पर राजी हो गया और अपने जिन को साथ लेकर चला गया और वो सेहतमंद हो गया। बाज़ुकात ना, एक बादशाह सरदार था, वो किसी सरदार से मिलने गया, उसने देखा कि एक गुलाम को ना रस्सियों से बांधा हुआ है, रस्सियों से बांधा हुआ। तो उस गुलाम ने कहा, मेरी सिफारिश तो कर, मुझे छुड़वा दे, मेरे आका ने मुझे रस्सियों से बांधा हुआ। उसने कहा, सखी है, शहंशाह है, छोड़ दे इसको, करे जालिम है, मेरे इसने ऊंट मार दिए हैं, एक नहीं 70 ऊंट मार दिए। क्या किया जी? उसने कहा कि ये मेरे ऊंटों का खादिम था और ऊंटों की लगाम लेके आगे चलता था, पीछे सारी कतार चलती थी, इसने हुद्दी लगाई। हुद्दी कहना है, कहते हैं जंग में एक चीज होती है, अशारों से रिस कहते हैं, इसी तरह ऊंटों के साथ जो चलते हैं हुद्दी लगाना कहते हैं कि अशआर पढ़ते हैं बड़े तरन्नम से गुनगुना के, ऐसी खूबसूरत आवाज में इसने अशआर पढ़े कि जानवरों पे असर हो गया और ऊंटों ने दौड़ लगाई, तेज ऊंट दौड़े और जो सफर करना था महीने में वो 3 या 5 दिन लिखे थे उसमें सफर कर लिया और जब यहां आए तो सारे गिरते गए गिरते गए गिरते गए। सालिम इसने मेरे सारे ऊंट मार दिए, वो तो पागल थे ना इश्क में, दीवाने थे, इश्क तो फिर भूख और प्यास और खाना और पीना, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने झूठा भात, प्यास न जाने धोबी घाट, इश्क न जाने जात। इश्क पागल होता है। बाद लोग कहते हैं हकीम साहब का मसलक क्या है, फिरका क्या है, मैं कहा पागल इश्क को संभाल जरा, इश्क को संभाल, इश्क न जाने जात, भूख न जाने झूठा भात, प्यास न जाने धोबी घाट, नींद न जाने टूटी खाट, इश्क न जाने जात। तो पागल था इश्क था उसको ऊंटों को जो हुद्दी लगाई और अशआर तरन्नम के साथ। ओहो ये जो रुहेले होते हैं ना सहरा के रहने वाले, अब तो आजकल के जवानों को तो पता नहीं, पुराना मैंने एक बाबे से ये बातें सुनी थी, उसने जो ऐसे पढ़ा ऊंटों में हलचल मच गई, बड़े अरसे से सहरा में जा रहा हूं, गालिबन 97 की बात है, 97 इसलिए याद है कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह 97 में फौत हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद। उस वक्त उसने अशआर पढ़े, कोई बंसरी नहीं कुछ नहीं, ऐसे हलचल मच गए उठ, तो जवान था, आवाज में तरन्नम खूबसूरती थी, उसको गैरत आ गई, उन्होंने कहा तू इसके मुसल्लत रहा, इसको सुखा सुखा के मार दे। क्यों कहते हैं किसी खूबसूरत को देखते कहे माशाल्लाह, अब पता चला कि उसके साथ अल्लाह की हिफाजत हो जाती है, उसके इर्द गिर्द फरिश्तों की दीवार बन जाती है। क्यों कहते हैं जब किसी खूबसूरत चीज को मरगूब चीज को महबूब चीज को मैं आपको सबक देता हूं, पढ़ो तो कहो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, अल्लाह तेरी कुव्वतें हैं, कोई और ताकतवर से ताकतवर कुव्वत वाला आके इसे कुछ नहीं कह सकता, अगर ना पढ़ो तो फिर यही कुछ हो जाता है। ये है शहराए आफियत, ये शहराए हिफाजत, मेरे आका का दीन, मेरे मदीने वाले का फरमान, मेरी कमले वाले की सच्चा दीन, ये है हमारे लिए आफियत हिफाजत किफायत किफालत। ये अब इस वाक्य से समझ आएगी कि हम जो तस्बीह खाने वाले बैठ के कहते हैं कि जब भी किसी को देखो कोई चीज ऐसी हो जो आपकी महबूब हो या कोई मरबूब हो या कोई आपको अच्छी लगी तो पढ़ो बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला। कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई भी चीज है, ये इसलिए कि हम किसी कदम से लुटने से बच जाए, छिनने से बच जाए, हमारी सेहत कोई ना लूट ले, हमारी आफियत हमारे सांस हमारा सुख हमारा चैन, कोई हासिद कोई दुश्मन। अब ये ना हासिद है या ना दुश्मन है, सिर्फ यहां गैरत है कि उसने कहा अच्छा बेटी, उन्होंने कहा पकड़ इसको सुखा सुखा के मार दे, ना यहां हसद है ना दुश्मनी है सिर्फ गैरत है, और गैरत के नाम पर यह कत्ल हो रहा है, यह कत्ल गैरत के नाम पर हो रहा है। कायनात में बिखरे हुए वाकयात हैं, एक और वाक्य सुना, बिखरे हुए वाकयात और बिखरी हुई राहें हैं। पहले ना जवानों में आप बड़ों से पूछें काजल सुरमा लगाने का बड़ा शौक, सुरमा गई आंखें होती थी जवानों में, काजल लगाना सुरमा लगाना और बालों के एक खास कैफियत, फिर गले के अंदर पचड़ियां, सोने के वो, चांदी के वो पहनना, क्या कहते हैं उसे, कहते थे तवीज़, माला, इस तरह की चीजें धागे के साथ बांध के पहनना, ये जवानों का शौक था। ये जवानी का शौक था और जवानों का शौक था। ये मैं आपको अपने वालिद के खूह की बात बता रहा हूं। खूह कहते थे जमीन को ना, खूह कहते थे, ये खूह की बात बता रहा हूं। मैंने ये देखा नहीं, सुना है मुझसे। वो रहते थे वहां, जो खिदमत गुजार थे, तो उनका बेटा था, कुछ 25-27 साल का था, जवान, खूबसूरत कद था। मैंने उस जवान को देखा है, लेकिन उसकी यह हालत नहीं देखी। तो कहा कि वो बंसरी बजाता था, साथ उच्च शरीफ है, तुसी उच्चे तोड़ी जात उची, तुसी विच उचा दे रहंदे, असी कसूरी साड़ी जात कसूरी, असी विच कसूर दे रहंदे। तो उचरी साथ है, उच के मेले पे ये बंसरियां बहुत बिकती हैं। उसे शौक था, वो बजाता था, कभी उधर बैठ के कभी उधर बैठ के, और बहुत खूबसूरत। मैंने उसकी ढलती जवानी देखी है, मैंने उसकी जवानी नहीं देखी। अभी भी जिंदा है, बूढ़ा है। उस दिन मैं गया वहां बच्चों को लेके, मैंने कहा देखो तुम्हारे दादा कि ये लोग थे जो खिदमत करते थे, मुलाजमत करते थे, जॉब करते थे, तो उनके गांव में लेके गया, मिठाई ली साथ हदिए। तो मैं वहां गया तो वो बड़े इकट्ठे हो गए, चारपाइयां बिछी हुई, और कहने लगे जी हमें तो सुना है आप मिलते नहीं है। तो एक आया, पतरा मेरे हाथ च पली तू। मैं कहा हाँ चाचा, मेरे हाथ में पला है, बूढ़ा था। और कहने लगे हमें वक्त दे। फिर मैंने गालिबन बुध का दिन था उस वक्त, तो मैंने जुमे के दिन पर वक्त दिया। उन्होंने टेंट लगाए, एक तय ये हुआ ना आप मजमे को रोटी खिलाएंगे ना मुझे रोटी खिलाएंगे, ताकि खर्चे के बगैर पीर बुलाएं, खर्चे के बगैर पीर की हाजिरी हो। पीर सही आसन से मिठे चावल खा सकता है, सुभान अल्लाह, कम ही पीर दाई हुई है, बगैर खर्चे के पीर बुलवाओ। मैंने कहा एक शर्त है, ना मेरा खाना होगा ना जितने आएंगे उनका खाना होगा। आके पीर सही कबूल है पर वेला दे सा। हो गया, सुबह मैं गया, स्पीकर लगा हुआ था, फिर उसके बाद जो है वो मेरा दर्स हुआ तो पैसे आना शुरू हुए। मेरे एक साथ बैठे थे, मैं कहा नहीं वेल ही लेते। मैं कहा नहीं लाओ, उसकी वीडियो है आपको, मैं वीडियो दिखाऊंगा, आपकी अकल तक रह जाए। मुझे एक दोस्त कहने लगे जी नेट पे ना डालिएगा, लोग इसको दूसरे लफ्जों में समझेंगे कि पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे आना शुरू हो गए, बड़े से बड़ा नोट 100 का था, देहात था ना, 10, 20, 50, बड़ा जो बड़ा नोट आता था। मैं ए सखी आई जिंदाबाद। तो फिर स्पीकर से अगर ऐलान हो जाए ना, पहले शादियों में ना वेल होती थी तो स्पीकर में ऐलान होता था, 1 रुपए का स्पीकर में ऐलान, मैंने सुना हुआ है। ढेर लग गया, अच्छा खासा बड़ा सारा ढेर लग गया। मेरे पास वीडियो है उसकी, हमारे दोस्त बना रहे थे मोबाइल, अच्छा खासा ढेर लग गया। मेरा दर्श हुआ उनके जौक के मुताबिक, उन्हें वज़ाइफ आमाल मदीने वाले का इश्क अल्लाह की मोहब्बत बताई। तो उसके बाद फिर दुआ कराई, दुआ के बाद मैंने जेब से अपनी थैली निकाली, मैंने कहा ये 500 मेरे अब्बे की तरफ, ये 500 मेरे तरफ, मेरी तरफ से। भाई बैठे थे, हम दो ही भाई हैं, बड़े भाई साहब। मैंने कहा 500 ये मेरे भाई की तरफ से, ये 500 मेरे बेटों की तरफ से। साथ मेरा कजन बैठा था, मैंने कहा साहब पैसे निकालो। हाई साहब ने 5,000 का नोट निकाला। साथ बैठा था एक दोस्त, उसने 5,000 का नोट निकाला। मेरे भाई साहब ने एहतियातन 2,000 निकाले। सारे करके कहने लगे, मैंने कहा उड़ते आओ, उन्होंने ना ही कालू बलोच, मैं कहा कालू उड़ते आओ, झोली कर, झोली करके ना उसकी जेब मैंने झोली में डाली। मैं कह वंग ए मसीद पवाए, वहां का बैठा था नंबरदार बड़ा, पता क्या कहने लगा, अके पीर सैया साहब ढी की वे नहीं, आप आप इस लफ्ज को समझें, ये वहां का हमारे साथ तो बहुत कुछ करके जा रहा है, क्या किया तूने? कहने लगा, मैंने कहा मेरी निस्बत दाता के पीर के साथ है, दाता देता है मांगता नहीं है, दाता देता है मांगता नहीं है, तो दाता देने वाला होता है। अगर मैं ले लूं पर मांगते के साथ मेरी निस्बत होगी, मेरी निस्बत दाते के साथ है, और कायनात का सबसे बड़ा दाता अर्शों में बैठा है। मैंने कहा ये मस्जिद में डाल दो। अब तक मुझे वहां से इतलाएं मिल रही हैं, वो कहते हैं कि वो जो पीर सही आए ना, वहां आते और बेचारे देगे पकाते हैं, उनके लिए देसी मुर्गी होती है, वो बड़ा लाजिम होता है, क्योंकि देसी मुर्गी ना हो तो पीर सब नाराज होते हैं, वो हो वो हो वो हो। मैंने कहा कुछ नहीं पकाना और इनको कुछ नहीं खिला। मुझे कहने लगा पानी, मैंने कहा सौख सर्दी पोल है, दिसंबर है, इनको पानी की क्या लोड़ होगी? हाँ एक टेंट लगा दो, सिर्फ छांव हो जाए सर्दी से, और उस दिन सूरज भी निकला हुआ नहीं था। या भी मैं हवेली में गया तो वहां के हालात, और वो नोट झोली भर के, हमें कदम कदम पे हिफाजत की जरूरत है। हां बात कर रहा था वहां की, खूह की बात कर रहा था, वो बलोचों में से एक जवान था जो मैं बात कर रहा था, सात बलोच बैठे हैं उनमें से एक जवान था। उनमें से एक जवान था, बैठ बैठ के बजाता था और वैसे भी गुनगुनाता रहता था। बाद में पता चला कि अंदर कोई रोग भी लगा हुआ था प्यार का, मैं तो पूंज मांगू फुरलावा, कोई रोग भी था। कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो बीमार हो गया है, उस पर दौरे पड़ते हैं, और फिर उसको अस्पताल में ले गए, उन्होंने जी इसको नशे के टीके लगाए हुए हैं, बस नशे में रखा हुआ है और रस्सों से बांधा हुआ है, दौड़े पड़ते हैं, अपने कपड़ों से बाहर आ जाता है, उसे कोई होश नहीं रहता, कुछ भी नहीं, कमजोर हो गया, इतना हो गया और सब कुछ खत्म हो गया, लगा लगा के खर्चा, थे तो गरीब सफेद पोश आदमी, दो बैल बेच दिए, गाय बेच दी, वो जोड़ी बैलों की जो हलों वाली थी, वो जिससे हल चलाते थे, वो जोड़ी बिक गई, भैंस बिक गई, भेड़ बकरियां बिक गई, फला बिक गई, इलाज पे लग रहा लग रहा लग रहा। फिर हजरत अमीरी शरीयत के पुराने साथी थे पीर मोहम्मद अली शाह साहब, एक पिपली राजन एक गांव है वहां के रहने वाले थे, फिर पता चला कि उन्हें बुलाया, मैंने उनकी जियारत की है पीर साहब की, पीर मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दरवेशों का आना जाना था, तो वो आए तो उन्होंने आती ना उसकी छोटी उंगली पकड़ ली, और छोटी उंगली पकड़ के कहने लगे वह बंदे का पुत्र डसा कि तू आई, बस उनकी बड़ी गाली यही होती थी, बंदे का पुत्र चुप करे, कहने लगे ठीक है नहीं बताता तो फिर मैं सैयद का पुत्र हूं ते जलाली सैयद हूं, इवें तेको मैं कहना छोड़ा सा। फिर पता नहीं पीर साहब ने क्या पढ़ा होगा, मुझे तो वो वक्त याद नहीं, अमल करते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। उसके बाद वो बोला कौन है, तो नस्वानी औरत की आवाज है, उन्होंने कहा मैं हूं, क्यों? उसने कहा बस मुझे अच्छा लगा, तो उसने कहा फिर यार के साथ यही कुछ करते हैं, लाह लाह बकायदा वो शाह साहब ने लानत दी, उसके मुंह पे तीन चार लानते मारी शाह साहब ने, यार नाल इवें करेंगे। और उसने जो जवाब दिया ना, उसने कहा अगर इसको तकड़ा कर दूं फिर उधर जाएगा, यहां भी गैरत आ गई है ना, समझ गए? रोग तो उसको लगा हुआ था और उसको पता था, उसने कहा इसको मैंने अगर सेहतमंद कर दिया मरेगा नहीं, जिंदगी अपनी पूरी करेगा, मारूंगी नहीं मैं, पर इसको इसी हालत में रखूंगी ताकि मैं जो गरा में मेरे जितना रहे। शाह साहब ने उसे कहा, अमाल बताए, कुछ तरगीब दिलाई, कुछ हिफाजत वाले अमाल, फिर वो ठीक हो गया और अभी तक भी है, वो बूढ़ा हो गया, सेहतमंद है। माशाअल्लाह, तबारकअल्लाह, इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये मेरी आका की मसनून दुआएं, मसनून अमाल। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, मैं आज ही पढ़ रहा था इसकी रिवायत में, मैं कि अल्लाह पाक उसको हिदायत देते हैं, उसकी किफायत करते हैं, उसकी हिफाजत फरमाते हैं और शरीर जिन्नात से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। ये अल्फाज हैं, मैं रिवायत पढ़ रहा था बयानात में, आज ही पढ़ रहा था, उसकी शरीर जिन्नात से उसकी हिफाजत फरमाते हैं, उसकी हिफाजत फरमाते हैं। क्यों फरमाया? मगरब के बाद बच्चों को बाहर ना निकालो। और मैंने एक दफा इसके फलसफे पे दर्स में बहुत देर तक बात की थी, नेट पे मेरा वो दर्स पड़ा हुआ है, कि बच्चों को मगरिब के बाद मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया। क्यों फरमाया? और बकायदा इसकी साइंसी लॉजिक है, साइंस की वजाहत है कि क्यों, किस लिए। हमारी जिंदगी में सफर आसानी से गुजर जाए, आफियत से गुजर जाए और वो मदीने वाले को साथ लिए बगैर नहीं गुजरे, मेरे कमली वाले को साथ लिए बगैर, चौकट मुस्तफा के बगैर, दर मुस्तफा के बगैर जिंदगी का सफर नहीं होगा मुकम्मल। अगर जिंदगी का सफर चाहते हैं सहूलत और आफियत और हिफाजत का हो, तो फिर चौकट मुस्तफा, दर मुस्तफा, आमाल नबवी के बगैर निजाम नहीं चलेगा, जगह जगह लुट जाएंगे। आज ही एक साहब ने मुझ पर एतराज किया, मैंने उसे फौरन उसके इतराज का जवाब नहीं दिया, उसे दो सवाल किए। बाजोकात ना पढ़े लिखे जवान आते हैं तो वो इतराज करते हैं कि जी ये जिन्नात सिर्फ हम मुसलमानों के ही लगते हैं, अंग्रेजों को नहीं लगते। तो मैंने उससे दो सवाल किए, मैंने कहा खुदकुशियां हमारे यहां ज्यादा है या उनके यहां? कहने लगे उनके यहां। मैंने कहा पागलखाने यहां ज्यादा है या उनके यहां? कह रहे उनके यहां। मैंने कहा और सवाल पूछूं? कह रहे बस काफी है। मैंने कहा मजीद अगर आपको चाहिए जिन्नात और जादू और नजर बद का असर, तो फिर लिंक्स हैं नेट पे पड़े हुए, हर बंदे के हाथ में नेट है, मोबाइल, हर बंदे के हाथ में किताबें हैं, लाइब्रेरियां हैं नेट के अंदर, लाखों किताबें पड़ी हैं और रिसर्च पड़ी है। साइंस इस वक्त पूरी दुनिया की पागल है कि इस वक्त वाकई कोई कायनात है ऐसी, अनदेखी दुनिया ऐसी है, जादू के नाम पे, जिन्नात के नाम पे और नजर बद के नाम पे, तीन अनदेखी दुनिया ऐसी है, जादू के नाम पे, जिन्नात के नाम पे और नजरें बद के नाम पे। नजर खुली रहे, आंखें खुली, मैंने कहा आंखें खुली होती अंदर सो रही होती है, ऊंट की दो आंखें होती हैं, एक ऊपर आ जाती है एक अंदर होती है, रेत हो ना तूफान, ऊंट आंखें बंद भी करता है देखता भी रहता है, दो आंखें होती है। आज बेटा सो रहा बाप जाग रहा, खुली आंखों के साथ बंदा सोता है बाजू का। सुभान अल्लाह पाक ऐसा मलका हर किसी को दे, ये सादत है। हमें तो पता नहीं कौन सा किस लम्हे, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह के पास एक बंदा आता था, वो कहता था किस जगह किस तरह और कैसे कोई लाठी आए पता नहीं है, कहां से कोई हादसे की लाठी आए, कोई मुसीबत की लाठी आए, कोई परेशानी की लाठी आए, और इसी तरह जवान है और आप और उसके बाद कोई उसको अनोखी अनदेखी चीज डस ले, जादू के नाम पे, जिन्नात के नाम पे, और इसी तरह कोई चीज ऐसी हो उसको डस ले, हमें तो कोई खबर नहीं। और सुनिए, सैयद जवाहर हुसैन शाह साहब एक बुजुर्ग थे, रियासत बहावलपुर के हकीम मौला बश के हां, तो बुरका पोश खवातीन आई, कहने लगी कि आप पहले दोनों मरीजों को देख लें, सबसे आखिर में हमारी बात सुने। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने चेहरे खोल दिए और बताया कि हम कौम जिन्नात में हैं, हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आए हैं। जिस तरह इंसानों में हिंदू मुस्लिम आबादी का मुंतकिल इंतकाल हुआ है, इस तरह कौम जिन्नात में भी मुसलमान और काफरों का इंतकाल हुआ है। हमने इलाज नहीं कराना, बस यहां से गुजर रहे, सोचा आपसे मिलते जाए और दुआएं लेते जाए। और एक और रिवायत है सुनने दो, लिखते हैं कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो लिखते हैं कि बाज़ोकात जिन्नात शयातीन मियां बीवी के दरमियान इतनी नफरत और दुश्मनी करा देते हैं कि बीवी अपने खावंद से बददिल होकर सख्त नफरत करने लगती है और उसे खावंद को देखना भी अच्छा नहीं लगता और यूं समझती है जैसे मेरे सामने इंसान नहीं भेड़िया खड़ा है, उसे खावंद जालिम नजर आएगा, भेड़िया नजर आएगा, खुद गरज नजर आएगा, बस उसको गरज है सिर्फ खिदमत की, घर की नुकरानी की, कुछ नजर नहीं आएगा। जिन्नात ऐसी नफरत दिलों में डाल देते हैं, यवस्वसुफी सुदूर इन्नास, ऐसी नफरत डालते हैं जो उसके सामने वो कहते हैं ऐसे होगा कि जैसे भेड़िया खड़ा है, भेड़िया जालिम है, भेड़िया है, खूनखार है, खबीस है, और बस उसका काम सिर्फ मियां बीवी के दरमियान जुदाई डलवाना है। और बाकायदा रिवायात में आया कि शयातीन का तख्त पानी में बिछता है और ये शयातीन एक दूसरे से जिन्नात कारगुजारी, बड़ा तख्त पे बैठता है बड़ा शैतान जिन, और वो सुनता है हां भाई तूने क्या कराया, उसने कहा जी मैंने कत्ल करा दी, ठीक है बैठ जा, उसने कहा जी मैंने फलां से चोरी करा दी, फलां से बदकारी करा दी, फलां से ये करा दिया, उसने कहा बैठ जा, एक खड़ा हुआ लंगड़ा शैतान तूने क्या कराया, उसने कहा जी मियां बीवी के दरमियान झगड़ा करा, मैं बस जिंदाबाद इधर आ, पीऊ का पुत्र है इधर आ, कान तपवा। अब सारे कहने लगे, सबको गहरत आई कि हमने इतने जतन किए, ये गुनाह, ये बदकारियां, ये जुल्म कराए और शाबाश इसको मिल रही है। उसने कहा इतने भी तुमने किए हैं, ये इनफरादी नुकसान करवाए हैं, घर का टूटना इंसानियत का टूट जाना है। मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पठान एक सिर्फ बद्दुआ देता है खाना खराब का बच्चा, पठान सिर्फ एक बद्दुआ देता है खाना खराब, ये कोई छोटी बद्दुआ नहीं है, ये छोटी गाली नहीं है, बहुत सख्त तरीन चीज है, जिसका खाना खराब हो जाए, घर बर्बाद हो जाए, बाप उसका क्या बचा। पठान कहता है ना खाना खराब है, ये जिन्नाती चीजें मुस्तकिल मियां बीवी के दरमियान नफरतें, बदगुमानियां, शक पैदा करती। अल्लाह के हबीब के पास आया बंदा, अस्सलाम ये बच्चा मेरा पैदा हुआ है किसी और रंग का है, यानी ये मेरी नस्ल में से है या कोई हराम का है और है, तो हुजूर ने बकायदा मिसाल दी। अच्छा ये बता तेरा ऊंट कोई और रंग का बच्चा देता है, उसने कहा जी हुजूर देता है, तो फरमाया चला जाए, बस हुजूर ने मफहूम है कि उसे मुतमईन किया कि शक और शुबे में ना अपनी बीवी पे, ये बच्चा किस रंग का पैदा हुआ है, इसके नक्श नैन, इसकी शक्ल सूरत, मैं कि ऊंट काला बच्चा देता है और रंग का बच्चा देता है कि देता है। मैं अभी सहरा में था दिसंबर में, मैंने एक सहराई से पूछा ऊंट, कहने लगा एक रग होती है बाजू का तीसरी नस्ल के में रग में, उसमें हुआ ये मैंने बच्चा पैदा हुआ ताजा पैदा हुआ था, मैंने कहा ये मां ऊंटनी की मां के रग का नहीं है, लगे कोई नस्ल का रग है वहां से आती है रग और उसी शक्ल में हो जाती है, कोई रग होती है पीछे चलती है उसके बकौल और उसी शक्ल का बंदा बच्चा पैदा हो जाता है। बदगुमानियां मियां बीवी के दरमियान, और बीवी ऐसे समझती है कि शोहर भेड़िया है, खूनखार जालिम है, और उस भेड़ शोहर की कोई एक सिफत उसको नजर नहीं आती, सब कुछ ये जिन्नाती शैतानी चीजें हैं। जो कि इसलिए मैंने कहा था बीवी जब मियां को देखे, मियां जब बीवी को देखे, आपस में देखते हुए क्या पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह तेरी कुव्वत ताकत इन जिन्नात शयातीन से ज्यादा है, मौला हम कमजोर हैं, اللہ ہماری محبتوں کو نفرتوں میں نہ بدل دے یہ چیزیں, اور ہم ایسے نہ ہو اسی نفرت کی دنیا میں چلتے چلتے زندگی ساری گزارتے ہیں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ساری عمر ماں باپ کو لڑتے دیکھا, خط میں خط لکھتے ہوئے, ساری ماں عمر ماں باپ کو الجھتے دیکھا, ساری ماں عمر ماں باپ کو آپس میں, یہ ساری زندگی یہی گزرتی ہے اور اس کے پیچھے یہ جناتی شیطانی چیز. اور مجھے کوئی فوبیا نہیں ہو گیا جنات کا, تو میں روایات سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں, مجھے فوبیا نہیں ہو گیا. مجھے کیا کروں, اتنے غم اتنے دکھ میں نے دیکھے اور سنے, اتنے دکھ ہیں, پتہ نہیں کریم نے میرے دل کو کتنا حوصلہ دیا ہوا ہے. اچھا خاصا بندہ ڈپریشن ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہمارے نا رسالے میں ہمارے سلطان صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, میں نے انہیں کہا کہ سلطان صاحب خط آتے ہیں, آپ امانت دار آدمی ہیں, ہم ہر بندے کو ٹاک نہیں دے سکتے, ہماری ٹاک حساس ہوتی ہے, لوگوں کے پتے ہوتے ہیں, ایڈریس ہوتے ہیں, موبائل نمبر ہوتے ہیں, ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں, ہمیں جو خط لکھتے ہیں, آپ ایسا کریں خط کا خلاصہ نشان لگا کے دے دیں, ہم وہ خلاصہ چھاپیں گے ساتھ جواب چھاپیں گے. ظاہر ہے سارا خط تو نہیں چھاپ سکتے, خط دو صفوں کا ہے. انہیں میں نے ڈاک دے دی, میں گیا نا ان کے گھر, یہاں کینٹ میں ان کا گھر, جب میں گیا تو ٹیبل میں ہر چیز ان کی سلیقے سے پڑی ہوتی تھی, ہر چیز ان کی سلیقے سے ڈاک پڑی ہوئی, اس پہ نشان لگے ہوئے. ہاں جی, میں نے کہا سلطان صاحب ماشاءاللہ ہو گیا. ان کی اہلیہ بوڑھا بوڑھی, ان کی اہلیہ کہنے لگے کہ حضرت کیا دے دیا ان کو, انہوں نے تو کچھ چند دن کام کیا اس کے بعد پڑے ہوئے ہیں سر پکڑ کے, کیا ہوا؟ کہ جی کیا ہوا, کہنے لگے لوگوں کے غم بھی اتنے ہیں اور لوگوں کے دکھ ہی اتنے ہیں اور لوگوں کے مسائل ہی اتنے ہیں, تو مجھ پہ اثر ہو گیا, میں تو پریشان ہو گیا, اتنے لوگوں کے غم, اتنے لوگوں کے دکھ اور اتنے مخلوق غمگین اور دکھی اور پریشان اور مصیبتوں اور دکھوں اور ٹینشنوں کی ماری ہوں. وہ تو سچ پوچھیں اللہ کی طرف سے پتہ نہیں مجھے رب نے کچھ کریمی شانے صدقے کوئی حوصلہ دے دیا, نہ تو سارا دن جو لوگ دکھ اور غموں کی کہانیاں سناتے ہیں نیندیں اڑ جاتی ہیں, زندگی کی کچھ چیز کی لذت کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ ایسا کریں, آپ کھڑے ہو جائیں اور روزانہ صرف 11 بندے آپ کو اپنے غم کی کہانی سنا لیں, اس دن سو کے دیکھیں روٹی کھا کے دیکھیں, 11 بندوں سے کہو اپنے غم کی کہانی سناؤ, نہ ایک کھپتی ہو, نہ ایک کہکہ ہو, نہ ایک مسکراہٹ ہو, صرف ٹیشو دے رہے ہو, ٹیشو کا ڈبہ ساتھ رکھنا, آپ دے رہے ہیں بےمان ٹیشو ہے, 3-3 پیار دیتا ہوں, بےمان ٹیشو ہے, ایک منٹ میں ایسے گل جاتے ہیں, 3-3 دیتا ہوں, دے رہا ہوتا ہوں. تو کوئی قدرت کی طرف سے, میرا کوئی کمال نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے کوئی نظام ہے, پتہ نہیں اللہ نے کیسے حوصلہ دے دیا اور لوگوں کے غم کی کہانیاں ہی سنتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں. دیکھو کوئی خبر نہیں کہ کہاں سے کیسی لاٹھی آئے اور ہمیں زخمی کر کے چلی جائے, ہماری میاں بیوی کے درمیان میں نفرتیں ڈالیں اور ایسی نفرتیں ہوں ساری عمر اسی نفرت میں چلتے چلتے زندگی گزر جائے. زندگی گزر جائے. وہ ایک بندہ تھا نا, اس نے دھواں دار تقریر کی, اس نے کہا جہاں انسان کی عزت ہو وہاں جانے کا کیا فائدہ. ایک بندہ بیٹھا تھا, وہ کہنے لگا اب ہم گھر بھی نہ جائیں, وہ تو تقریر کر رہا تھا جہاں انسان کی عزت ہو وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. بندہ چپکے سے بولا گھر بھی نہ جائیں. اس نے چیک کیا نا ڈاکٹر نے, اس نے دیکھا سر ایک دانت کے 200 روپے لگیں گے دانت. اس نے کوئی بات نہیں, سارے نکال دے, میں سارے پیسے دے دوں گا. یہ زندگی ہے اور اس زندگی میں آ کے کون خلل ڈالتا ہے, کون نفرت ڈالتا ہے. قرآن نے ہمیں واضح بتایا ہے, قرآن اٹھائیں, اور احادیث نے ہمیں واضح بتایا ہے, قرآن سچا اور میرے آقا کا فرمان سچا, اٹھائیں روایات. چونکہ میرا موضوع ہے, میں یہ روایات ڈھونڈ کے لے آتا ہوں, میرا موضوع ایسا ہے نا. یہ جو مناظرے کرنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے مسلک کے خلاف وہ روایات کٹھی کرتے ہیں جن میں ان کا काफिर होना साबित हो जाए। तो मैं वो रिवायात इकट्ठी करता हूं अहदीस से, मुहदसिन से, मुफस्सरीन से, अपने साथियों से कहता हूं वो रिवायात इकट्ठी करके मुझे दें जिन रिवायात में यह साबित है कि हमें जिन्नात, शयातीन, नजरे बद, जादू कहां कहां डसता है और हमें कहां हिफाजत करनी है, अपनी भी, अपनी नस्लों की भी। और एक है कि अपनी जात से हिफाजत करें, एक है अल्लाह से हथियार लें। वो अल्लाह से जो हथियार लिया हुआ है वो मसनून दुआएं हैं, वो कुरानी आयात है, वो हम असल उनके साथ चलेंगे। देखो किसी की टेक पे चलना है, अपनी कोई हैसियत ना हो तो फिर किसी की टेक पे चलें, हाँ, और गले में किसी का पटा हो, वरना आदमी की कोई हैसियत नहीं है, या तो आदमी की अपनी कोई हैसियत हो, अल्लाह और उसके हबीब के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं, ठीक, आले मोहम्मद के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं, अस्हाब मोहम्मद के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं, औलिया सालिहीन मुहद्दिसीन मुफस्सरीन के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं। तो जब हमारी कोई हैसियत नहीं, फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, फिर उन्हीं से कुछ लें। और वो ये मसनून दुआएं हैं, ये आमाल हैं, ये जिक्र हैं, ये कदम कदम की तस्बीहात हैं, इनके साथ हम चलेंगे। इससे अल्लाह पाक जल्ला शानु हमारे लिए फैज, फजल, करम और बरकत और आफियत के रास्ते खोलता है, और अल्लाह दिखाता है कि कहां हिफाजत है, और मैं करके दिखाता हूं। माशाल्लाह से मुराद हमने अपने अल्लाह के आप को हवाले कर दिया। जजाकल्लाह से मुराद, मौला इसकी जजा मैं नहीं दे सकता, इसका सिला मैं नहीं दे सकता, अल्लाह तू दे दे। इंशाल्लाह से मुराद, अल्लाह मैं चाहूं तो सब कुछ नहीं हो सकता, पर तू चाहे तो हो जाएगा। ये तबारक अल्लाह, अल्लाह तू ही चाहे तो बरकत हो सकती है, और तू चाहे तो इसमें फैज और खैर मिल सकती। ये वो अल्फाज है जो कदम कदम, क्यों कहा अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज इस्तेमाल करो, इसलिए कि सलाम मेरे अल्लाह का नाम है, और सलाम में सलामती है, जिन्नात से सलामती, जादू से सलामती, नजरे बस से सलामती, गन पॉइंट से सलामती, मेरी जेब की हिफाजत, मेरी जान की हिफाजत, मेरी बेटियों की, उनकी आंचल की, मेरी जिंदगी की, मेरे घर की, मेरे सवार की, मेरी सवारी की, ये जिंदगियों की सारी हिफाजतों का निजाम, इसी का नाम सलाम है। जा तुझ पे सलामती हो, किस चीज की सलामत, मेरे माल की, मेरी जान की, मेरी इज्जतों की, मेरी आबरों की, मेरी शान शौकत की, हिफाजत, हिफाजत। जब ये हिफाजत होती है, इस पे अल्लाह पाक जल्ला शान हो, इससे मुराद यह है कि हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले, अस्सलामु अलैकुम, तुझ पे क्या हो, इसकी अल्लाह की। वो क्या, अच्छा वो कहते हैं वालेकुमुस्सलाम, तुझ पे भी अल्लाह की सलामती हो, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि, और तुझ पे अल्लाह की रहमत भी हो, व बरकातुहु, और बरकतों के तेरे लिए दरवाजे खुल जाए। अच्छा बिलफर्ज हमने सलाम किया, अपनों को या गैर को, जानने वालों को या ना जानने वालों को सलाम किया, कोई ऐसा वली था जिसका अल्लाह बोल नहीं लौटा था? फरमाया दुनिया में ऐसे बंदे फिर रहे होते हैं जो सादा हैं, जिन्हें मखलूक पहचान नहीं सकती, पर वो अल्लाह से अगर कोई चीज कसम उठा लें, या अल्लाह से कोई अहद कर लें, या अल्लाह से कोई चाह लें, तो अल्लाह कर देता। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बाजार में बैठे हुए थे, एक गरीब के लिए चंदा कर रहे थे, है कोई इसका चंदा देने वाला, उसके लिए चार दुआएं करूंगा, उसके लिए दुआ करूंगा, कोई चंदा, कोई एतराज, कोई बातें, कोई कहेंगे ये मंगता बैठा है, सारा दिन यही काम है, कोई क्या कहता है। एक आका था, उसने अपने गुलाम को चार दिरहम दिए। ये मैं वो बोल कर रहा हूं जो अल्लाह पाक फिर पूरी करके दिखाते हैं। अल्लाह के वली के बोल देखें जरा, हबीबे खुदा दे, फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन ज़मीरां तो सदके, न दौलत तो सदके, न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जा असीरां तो सदके, जिना रोमी जामी ते सादी नू डंगया, मैं उना प्यार अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलाना ले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। अब इसको इसके मालिक ने कहा था कि जाके फल ले आ, मेवे ले आ, शराब ले आ, 4 दिरहम दिए। अब फकीर, अल्लाह का फकीर बैठा सदा लगा रहा, है कोई जो इस गरीब की मदद करे मेरे कहने पे, मैं उसके लिए दुआ कर दूं। हाय हाय, अल्लाह करे मेरे दिल में, आपके दिल में किसी फकीर की दुआ की अहमियत आ जाए और अजमत आ जाए। आप सोच नहीं सकते ये जो तवज्जो और दुआ है इसकी क्या ताकत है, इसकी तासीर क्या है, हमें खबर ही नहीं, कदर ही नहीं, पता ही नहीं इस तवज्जो और दुआ की तासीर क्या है, हमें क्या खबर है। जिसको पता है वो कैसे दुआओं से महरूम रहे, और तवज्जो वो तो एक एक पल में अपने आप को दुआओं का मोहताज समझता है। उन्होंने कहा चलो आज तो सौदा ही कर लो किसी फकीर का, अनदेखे सौदे होते हैं फकीरों के साथ, अनदेखे सौदे। बात कहां से छोड़ी थी मैं? नहीं, वाक्य कहां से छोड़ा था? ये वाक्य तो बाद में शुरू किया मैंने। अरे वो तो बयान कर रहा मैं, वो तो कर रहा हूं। ठीक ठीक, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तासीर में मैंने अर्ज किया था कि अनदेखी चीजें, अनदेखा मदद, अनदेखा निजाम इसमें है। उन्होंने कहा आज फकीर है, मौज में है, दुआ करा ले। उन्होंने कहा हजरत ये 4 दिरहम है, मेरे मालिक ने मुझे कहा चीजें लेने के लिए, सजा मिल जाएगी, डांट पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, आज फकीर की दुआ ले लो। उन्होंने 4 दिरहम दे के उस साहिल को दे दिया। बोल क्या मांगता है? उन्हें सबसे पहले तो यह है कि मुझे इस गुलामी से अल्लाह निजात दे दे, पहली दुआ। दूसरी दुआ यह है कि अल्लाह मेरे मालिक को तौबा दे दे। तीसरी दुआ यह है कि मुझे इसका बदल दे दे, 4 दिरहम जो मैंने दिए हैं अल्लाह मेरी झोली भर दे इसके बदले में। और चौथी यह है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे मालिक को माफ कर दे। तो दरवेशों ने 4 दुआएं मांगी कि अल्लाह इसको आजादी दे, एक दुआ। दूसरा या अल्लाह इसको इसका बदल इन पैसों का दे दे, और तीसरा या अल्लाह इसके मालिक को तौबा दे दे, और चौथा या अल्लाह इसको और इसके मालिक को माफ कर दे। अब ये दुआएं उन्होंने कहा भाई चलो ये दुआ हो गई, चलो जाओ, हो गई दुआ। बाज़ औक़ात दुआ का असर फौरी नजर आता है, और बाज़ औक़ात दुआ का असर किसी वक्त नजर आता है, और घड़ी का इंतजार होता है, लेकिन दुआ का असर जरूर मिलता है और बददुआ का असर भी मिलता है। आज मेरा दिल बहुत दुखा, मेरे साथियों ने लोगों को नौचंदी की इतला नहीं की। एक मुझे कहता है नौचंदी है, दूसरा कहता है नहीं है, और आखिरी वक्त आज के दिन बैठ के मशवरे कर रहे हैं, इतने जालिम लोग। मेरे दिल से बस ऐसी तबीयत खराब हुई, और मैंने उससे कहा, मैंने कहा तूने मेरा दिल दुखाया है, किसी फकीर का दिल ना दुखा, मेरी कोई औकात नहीं, पर मेरे पीछे हस्तियां बैठी हैं। जैसे कुछ औतरे बंदे को ना किसी पार्टी का टिकट दे दें और वो कामयाब हो जाता है, मेरा हाल है वही, तूने मेरा दिल दुखाया। तो तेरे जिम्मे था मखलूक को इतला कर। तो लेके आए, मालिक ने कहा उसके आका ने, इतनी देर कर दी, कुछ नहीं लाया, ऊपर से ऐसा फैसला करवा के आया था। हाँ हाँ, फकीर दी रब नाल बनिया ने, ऐसा तो करवा के आया था। वो नहीं नहीं ऐसे ऐसे किसी फकीर के पास गया, मालिक बिन दिनार बैठे थे, और उन्होंने ऐसे कहा ऐसे, अच्छा क्या कहा था? उन्होंने पहली दुआ क्या कराई थी? उन्होंने पहली दुआ यह कराई थी कि अल्लाह पाक मुझे गुलामी से जा तू आजाद। और दूसरी दुआ क्या कराई थी? उन्होंने कहा जी अल्लाह आपको तौबा की, अगर आज के बाद मैंने तौबा की, हर चीज तोड़ दी, सब जाम, सब गाने बजाने, सब चीजें तोड़ के, अल्लाह का बस आज के बाद मैंने तौबा करी। उन्होंने कहा तीसरी दुआ क्या कराई थी? उसने कहा जी ये अल्लाह पाक मुझे इन 4 दिरहम का बदला दे दे, कहा तुझे 4,000 दिरहम दिए। उन्हें चौथी दुआ क्या कराई थी? उसने कहा जी अल्लाह पाक माफ कर दे, करे ये मेरे बस में नहीं। रात को ख्वाब में देखा, कहने वाले ने कहा जो तीन चीजें तेरे बस में थी तूने कर दी, जो हमारे बस में हमने कर दी। हमने तुझे माफ किया, हमने तेरे गुलाम को माफ किया, हमने मालिक बिन दिनार को माफ किया, और उस महफिल में जितने बैठे थे सबको माफ किया। जो तेरे बस में था वो तूने कर दिया, हमारे बस में हम नहीं कर सकते। अल्लाह किसी फकीर की दुआ की कदरदानी अता कर। मालिक बिन दिनार जा रहे हैं, देखो एक महल बन रहा बहुत बड़ा। पूछा किसका महल है? उसने कहा जी एक जवान है, उसने माल है, महल बन रहा। बुलाया, क्या हाल है? ठीक है। बिठाया, महल बना रहे हैं जी, कितना माल लगाने का प्रोग्राम है? उसने कहा जी इतने तोड़े चांदियों के सिक्के होते थे, इतनी बोरियां मैं लगाऊंगा। फिर उसे बैठ के जन्नत के महल के बारे में बताया, ऐसा जन्नत का महल होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसमें इसमें तो गारा लगेगा, उसमें तो मुश्क लगेगा, उसमें कस्तूरी लगेगी, उसमें जाफरान लगेगा, इसमें तो कच्ची पक्की ईंटें हैं, उसमें तो सोने और चांदी की और जमरत की, अकीक की, मरजान की, जबरजत की, और रेशम, और सारे महल बताया बताया बताया। लगा सौदा करता है, नहीं करता हूं, माल मुझे दे, महल अधूरा छोड़ और जन्नत के बदले में कर। लगा जी ठीक, देखे सौदे, उन्हें सौदा किया, माल लेके रख दिया। उन्हें कहा फिर लिख के दे। लिख दे तुम। लगिया ने मौजा ते लगामी सोने, बस लिख के दे। असल में ना जो चीज इंसान को करवाती वो यकीन करवाता, और इंसान जहां से फिसलता है बेयकीनी और शक उसको कहां से कहां ले जाता। उन्होंने कहा लिख के दे। उन्होंने कागज कलम पे लिख दिया, मालिक बिन दिनार वादा करता है अल्लाह से उसकी रहमत के भरोसे पे कि इसको इन पैसों के बदले ये जन्नत और इन खूबियों वाली मिलेगी मिलेगी मिलेगी, ऐसे ऐसे मिलेगी। कागज रखती, कागज रखती। कुछ अर्से के बाद गुजरे तो उस घर के सामने काला कपड़ा पड़ा हुआ था, और उस दौर में काला ही चादर और काला कपड़ा इस बात की दलील थी कि इस घर में कोई मौत वाकई हो गई है। कहने लगी क्या हुआ? दरवाजा खटखटाया, क्या हुआ? उसने कहा वो जवान फौत हो गया, इसे सौदा किया था। अच्छा, फिर बैठ गए तो हाल का पता चला। उस जवान ने कहा था कि कोई रुक्का मेरे कफन और सीने के दरमियान रख देना, और कोई दुर्वेश आए थे और जिन्होंने सौदे किए थे उससे और उसका माल ले गए थे और गुरबा मसाकीन में तकसीम कर दिया था खैर के कामों में, और उन्होंने कहा था कि वो रुक्का रख देना मेरे कफन और सीने के दरमियान, और कहा वसाल कहने लगा गुस्ल देने वाला, मैंने अपने हाथों से रुक्का रखा, दूसरे दिन फजर की नमाज के वक्त मेहराब से वो रुक्का गिरा और उसके पीछे नूरानी स्याही से लिखा हुआ था कि मेरे अल्लाह ने मालिक के वादों से ज्यादा अपना वादा पूरा कर दिखाया, और उसको ज्यादा से ज्यादा इससे भी ज्यादा बेगुमान जन्नत और नेमतें दे दी है। क्या दुआ है, क्या सौदे हैं। हलादुल्लुकुम अला तिजारत तुंजी को मेरा आजाब इन अली। मेरा अल्लाह कहते आओ मुझसे तिजारत करते हो, सौदे करते हो मुझसे, आओ सौदे करो मुझसे। ये तवज्जो और दुआ बड़ी ताकत है, इसमें बड़ी ताकत है, बहुत कुवत है। मैं पिछले दर्श में मुसाफे के दौरान मेरे आंसू बह रहे, अंधेरा था, पिछले से पिछले दर्श में गालिबा अंधेरा था, और मेरे दोस्तों ने कुछ मोबाइल की लाइट जलाई हुई थी, तो मेरा मुझे ऐसे मेरे आंसू बह, मेरे मुर्शिद की मुझे बात याद आई कि जा कतारें होगी
और लोगों से तो हाथ नहीं मिला पाएगा, हाथ और बाकी बंदे हाथ नहीं मिला पाते।
बस मैं डर रहा था कि मौला अल्लाहुम्मा जालनी फी आइनी सगीर, बस अपनी नजर में मुझे मौला जलील कर दे, अपनी नजर में छोटा कर दे, कहीं अपनी नजरों में अपने आप को कुछ समझ ना बैठो।
और फिर मुझे फरमाया तुझे अल्लाह दिखाएगा इससे पहले, और वाकयतन मैंने ख्वाब देखा, आज भी मुझे याद है। हमारे बाप दादा परदादा का घर था, जिन घर में मौलाना ममलूक अली साहब तशरीफ लाए, वो हजरत मौलाना खलील अहमद सारपुरी जितने अरसा बहावलपुर रहे उस घर में तशरीफ लाते थे, और हजरत मदनी तशरीफ लाए, मैंने देखा उस घर के दरवाजे के बाहर दूर तक एक लंबी लाइन लगी हुई है और वो सब मुझसे मिलना चाहते हैं। और यह ख्वाब मैंने गालिबन 85 या 86 में देखा, हजरत से बैत 84 में हुआ था, 85, 86 या 87 में देखा गालिबन ख्वाब देखा। और मैंने हजरत से अर्ज किया, खामोश हो गए, फकीर की तवज्जो और दुआ और उस पर यकीन। लोग क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, ईरानी पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जा रहा है और एक बंदा सबसे ज्यादा रो रहा है, सबसे ज्यादा रो रहा है, और हजरत के खुदाम मुरीदीन ने कहा आज तक हजरत की महफिल में इसको देखा तो है नहीं कि हजरत की जुदाई में रो रहा। तो पूछा तो कहने लगा कि मैं हजरत के विसाल पे नहीं रो रहा, जाना तो सबको है, मैं अपनी महरूमी पे रो रहा। मैं हजरत का पड़ोसी था और मैं लोगों से तरह तरह की बातें सुनता रहता था, कोई कहते थे दुनियादार है, कोई कहते थे दुकानदार है, कोई कहते थे ईमानदार है, मैं बातें ही सुनता रहता था। मैं इसी मुगालतों में रहा, रात में सोया हुआ था तो किसी कहने वाले ने कहा कि कायनात यतीम हो गई और हमारा एक दोस्त अब्दुल कादर दुनिया से उठ गया। तो मैंने पूछा कौन, कहा तेरा पड़ोसी, मुझे अपनी महरूमी पे रो रहा हूं, मैं इनकी रुखसती पे नहीं रो रहा, मुझे अपनी महरूमी पे रोना है, क्या काश मैं करीब होके दूर रहा। मैंने कहा ना कि हमारे पड़ोसी की मैयत तस्बीखाने में आई, मुझे दुख है। मुझे पता चला ना कि पड़ोसी फौत हुए और फिर मोबाइल पे उन्होंने मुझसे मैसेज किया, इजाजत ली के जी वो, मैंने कहा हाँ ठीक है आम है जो भी जनाजा पढ़ाना चाहे। एहसास हुआ उसकी मैयत तस्बीखाने में आई, आज तक वो बंदा तस्बीखाने नहीं आया। अंधे के सौदे होते हैं, अंधे के सौदे, और जो कर लेता है बस उसको रब भेज देता है। हजरत बहलोल रहमुल्ला घरों में बनाए हुए हैं, घर बनाया हुआ है मिट्टी का, और कह रहे हैं और जन्नत का महल कौन लेगा। जुबैदा भी जा रही, हारून रशीद भी जा रहे हैं, बादशाह और मलका। हारून रशीद मुस्कुरा दिया, हारून रशीद का कजन था, रिश्तेदार था, कहते थे लोग कहते थे पागल है, वो तो अल्लाह की मोहब्बत में जज्ब था, मजजूब था, जिसके अंदर इश्क मुस्तफा जज्ब हो जाए, मोहम्मद और आले मोहम्मद और अस्हाबे मोहम्मद का इश्क और औलियाए मोहम्मद का इश्क जिसके अंदर खुद जज्ब हो जाए, रेत के ऊपर जितना कुछ चाहे पता नहीं चलता, जज्ब हो जाए, उसे मजजूब कहते हैं। तो मजजूब थे, बच्चे पत्थर मारते थे, आवाजें कसते थे। जुबैदा कहने लगी कितने पैसों का महल है, उसने कहा इतने पैसे, उसने कहा ये लेके पैसे, उन्होंने कहा जातना महल हो गया। हंस पड़ा, अब बादशाह के सामने इतने पैसे में क्या है इसे, उन्होंने कहा वाह जुबैदा वाह, तू भी पागल के इतबार में आ गए। उन्होंने कहा क्या है, खजाने हैं। रात को हारून ने, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, एक महल है और उसके ऊपर लिखा है बैत जुबैदा, जुबैदा का महल। उसमें जाने लगा, उन्हें ओ भाई इधर हट जा, ये कहां जा रहा ये कहां जा रहा। उसने कहा मेरी बीवी, उन्होंने कहा दुनिया में होगी, महल लिया फिर बात बने।
نیند کھلی تو ہائے نکل گئی, زبیدہ سودا کر گئی, سودا کر گئی, سودا کر گئی, ہائے نکل گئی, اندھے کے سودے پا گئی. ٹرک کے پیچھے دیکھا, عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا, عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ, اس طرح کا کوئی لفظ دیکھا میں نے, اس طرح کوئی ہے دیکھا میں نے, یہ نا چلتا پھرتا سکول ہے, نالج ملتا ہے ٹرکوں کے پیچھے, بسوں کے پیچھے نالج ملتا. اب دوسرے دن پھر گئے, جب پھر گئے تو وہ پھر کہہ رہے ہیں جنت کا محل لے لو لے لو. ہارون نے بڑھ کے کہا دے دو, ایسے دیکھ کے کہنے لگا ہارون ان دیکھے سودے ہوتے, ان دیکھے سودے ہوتے, اب تو دیکھا ہے, اب تو دیکھا ہے. اب یہ حکومت آ کے حکومت کیا ایسی کتنی حکومتیں دے دے تب بھی سودا نہ ملے. یہ توجہات, یہ دعائیں, یہ اندیکھے سودے ہیں, نظر نہیں آتے. مجھے درویش کی توجہ مل رہی تھی, بندہ آ کے بیٹھ گیا, درویش کو انقباض ہوا, تکبر پیدا ہوا, توجہ ہٹ گئی, بندہ گیا توجہ پھر شروع ہو گئی. میرے سامنے کھانا رکھا, لگا پیٹ بھرا ہوا تھا, کہنے لگا اسپیشل کھانا بنایا, میں نے کھانا شروع کر دیا چھوٹے چھوٹے لک میں, اور کھانے کے دوران ہلکی ہلکی باتیں ہو رہی تھی, اور وہ کھانا نہیں تھا, وہ روحانی غذا تھی. پاگل خالی آیا ہے میرے پاس, بھانڈا تیرے پاس ہے کوئی نہیں, مجمع لے کے بیٹھتا ہے اور باتیں کرتا ہے, اور جا تیرے دل میں کچھ دے کے دیتا ہوں, خالی تو تولا کم نہ جا, پاگل خالی آیا ہے اور ہے تیرے پاس کچھ نہیں, اور لوگوں کے سامنے تو نے ایسی اپنی بھرم تیرے رب نے تیرے رکھے ہوئے ہیں, ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. توجہات, توجہات. اس لیے درویش سفر میں سب کو نہیں رکھتے, ہر کسی کو نہیں رکھتے, کیونکہ سفر میں بعض اوقات بعض ایسی باتیں آتی ہیں جہاں انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے, عشق شروع ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی کچھ کیفیتیں, تو اچھے خاصے بندے بدگمان ہو جاتے ہیں, اور جب بدگمانی آئی نہیں اور دعا اور توجہ کی لائن کٹی نہیں, وہ کنیکشن ہی ختم ہو جاتا ہے, پھر جسم چل رہا ہوتا ہے اور ایک ڈھانچہ چل رہا ہوتا ہے, پھر وہ بے روح جسم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیا بتاؤں آج آپ کو, پتہ نہیں میں کہیں اور موضوع پہ جانا چاہتا ہوں, پھر کوئی آپ حضرات کی کیفیتیں مجھے پکڑ پکڑ کے کہیں اور لے آ رہے لا رہی ہیں, پھر میں جنات کے موضوع پہ جانا چاہتا ہوں, پھر مجھے ادھر سے پکڑ کے ادھر کوئی چیز لا رہی ہے, پھر سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کی رضا اسی میں ہے اور خیر اسی میں ہے, وقت کی خیر, حال کا امر یہی ہے, لگ شاید کہ اللہ یہی چاہتا ہے. کتاب سے توجہ ملتی ہے. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے شیخ شرف الحق یا منیری رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے توجہ لی, مکتوبات سے توجہ لی. یہ کیا بات ہے؟ یہ بتائیں مجھے, اگر کمرے میں پھول آ جائے اس کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اور کوئی چوہا آ جائے یا کوئی گندگی آ جائے اس کی بدبو کا احساس ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ان ظاہر کی ایک ظاہر کی حصے ہیں, ہوا سے خمسہ سونگنے کی حس, سننے کی حس, یہ ہماری حصے ہیں, یہ حصے محسوس کرتی ہیں, ایک دل کی دنیا کی حصے ہوتی ہیں. کفگیر لگا دیکھ پہ اور
مرشد کامل بیٹھے ہوئے تھے. مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا لولو دے وچ وسے ہو تے نال نگاہ دے پاک کریندا نہ صابن سجی کھتے ہو, نگاہوں سے بھی کچھ ملتا ہے.
ایسے کفگیر لگا, چمچ لگا, لنگر پک رہا تھا. حضرت نے فرمایا فقیرو فقیرو اس کو روکو, جو لنگر اس نے پکایا سارا دفن کر دو. حضرت خیریت, کوئی ناپاک حرام تو کچھ بھی نہیں ہوا, پر میں نے دیکھا ہے اس نے جب یہ کفگیر یہ چمچ دیگ پہ مارا ہے تو اس کی آواز ایسے پیدا ہوئی ہے جیسے نکارے کی آواز, اور میں نے اندر سے برکت اٹھتے دیکھی. یہ اندر کی آنکھیں ہیں, دل کی ولی کی آنکھیں ہیں, یہ ولایت کی نظریں ہیں, یہ وہ حصے ہیں جن کو ہم سمیل نہیں کر سکتے, فیل محسوس نہیں کر سکتے. اور اس لنگر کو دفن کر کے پھر فرمان لگے فقیرو اے بے برکت لنگر کھواتے میں فقیرہ کو کھواؤں, مالا اللہ اللہ کرے سے تا سن سے یہ بے برکت لنگر میں ان کو کھلاؤں گا, یہ اللہ اللہ کہاں کریں گے, یہ تو سوئیں گے. اور فرمان لگے مولویوں کو نہ دسائے انہوں کو سمجھ کیا نہ آسے, مولویوں کو نہ بتانا ان کو سمجھ نہیں آئی. اور وہ لنگر یہ ایک نظریں ہیں, اور دل کی نظریں ہوتی ہیں, اندر کی حس ہوتی ہے. وہ دنیا کے بندہ بیٹھا دھوکے کھا رہا ہوتا ہے, اسے دنیا میں ہر بندہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, باتیں سن رہا ہوتا ہے. جب دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے, پھر دل کی آنکھیں ہوتی ہیں, پھر دل کی نظریں ہوتی ہیں, پھر دل کا ایک جہان ہوتا ہے. لوگ اسے دھوکہ دے رہے ہیں باتوں کا چیزوں کا, اور وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. اس کے دل کی جہان میں دنیا اور ہوتی ہے. اور یہ چیز توجہات سے ملتی ہے, اور توجہات اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب بدگمانی شک اور وسوسہ آتا ہے, اس کی لائن ہی کٹ جاتی ہے, کریکشن ہی ختم ہو جاتا ہے. توجہات اور دعاؤں سے, اور دعائیں لی جاتی ہیں, کہیں نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں, دعائیں لی جاتی ہیں منشا کے مطابق چل کے, کوئی خدمت کر کے, کوئی اندر سے دعائیں لی جاتی ہیں. اور دعائیں ہوتی وہ جو اندر سے نکلیں, اور آہیں ہوتی وہ جو اندر سے نکلیں. آہیں تو ہوتی وہی ہیں جو اندر سے نکلیں. دیکھیں میں نے ابھی سکھر والوں کو ایک بات کہی, میں نے کہا تمہارے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ میں ہر سال آ جاتا ہوں. جہاز گاڑی اور ڈیفنس یہ کراچی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, یہاں سے جہاز آگے گاڑی. ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں, ان کی بلٹ پروف گاڑی آتی ہے. میں حاجی صاحب مجھے کون مارے گا, کہ بس میرا شوق ہے. یہ ہمارے ایک اور موسن ہیں حاجی صاحب, وہ اپنی گاڑی لے آتے ہیں اور ڈیفنس میں جانا. میں نے پورے 2019 میں کراچی کا درس نہیں رکھا. اگر تو میری ذات کی سہولت اور استقبال موجود ہے تو پھر میں جہاز میں جاتا ہوں, وہاں پراڈو کھڑی ہوتی ہے, ڈیفنس میں چلا جاتا ہوں. پھر میرے نام پہ وہاں کراچی کے بڑے بڑے رئیس شامیں رکھتے ہیں, اور آپس میں ایک دوسرے سے شامیں چھینتے ہیں. یہ سچ ہے. ایک شام بڑے بڑے اینکر, بڑے بڑے ان کے رئیس آتے ہیں, بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں بس آپ 10-15 منٹ تھوڑی سی بات کر لیں. یہ صورتحال ہوتی ہے. میں نے پورے 2019 میں درس کراچی کا درس نہیں رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کیفیت ہوتی ہے جو آج میرے ساتھ ہوئی ہے. ایک کہتے ہیں نوچندی ہے, ایک کہتے ہیں نہیں ہے. کسی کو احساس پرواہ نہیں, مجمع کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. ایک بندہ نا سپیکر کی ٹوٹی لے کر پکڑ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی بیچارہ کہاں رول رہا ہے, کوئی کہاں رول رہا ہے. کوئی کراچی کا ایک ذمہ دار آدمی کراچی کے مجمع کو سنبھالے, اور تسبیح خانے کا مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کراچی کا, اتنا مجمع ہے. کسی کو پرواہ نہیں. سب کہتے ہیں اپنی گاڑیاں بٹھا ہمیں, ہمیں سیر کروا. میں تو سیر کرنے خود ہی نہیں آیا. جو ذمہ دار کراچی کا ہے وہ کہتا اپنی گاڑی میں مجھے بٹھا لے, ایئرپورٹ پہ آئیں گے میرے ہاتھ سے بیگ لے لیں گے. میں بھی چپ کر جاتا ہوں. کئی بار ان سے عرض کیا, کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اپنی ذات کی سہولت اور استقبال مطلوب نہیں ہے, مجھے کام مطلوب ہے, اور مجمع کی سہولت مطلوب ہے. یہ یہ مہمان ہے مدینے والے کا مجمع، ہر فرد کملی والے کا اللہ اس کے رسول کا مہمان ہے، ان کو سکھ سہولت ملے۔ یہ سپیکر ٹھیک ہو، کوئی چٹائی بچھی ہوئی ہو، چلو کوئی ایسی چیز ہو جہاں بیٹھ کے بات تو سن سکیں۔ کوئی ایک بندے کو وہاں احساس نہیں۔ میں نے کہا مولا مجھے کراچی نہ لے جاؤ، پورے 2019 کے شیڈول میں کراچی رکھا ہی نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب توجہات کی طلب ہوتی ہے پھر انسان تڑپتا ہے، پھر ہر وقت گمان میں ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بدگمانی، کوئی شک ایسا نہ ہو میری توجہ کا کنیکشن لائن کٹ جائے۔ پھر اگر کوئی خدمت دی جائے اس بندے کو، یاد دہانیاں نہیں کرانی پڑتی، جو توجہات اور دعاؤں کا طالب ہوتا ہے پھر اس کو خدمت کے لیے یاد دہانیاں نہیں کرانی ہوتی، اس کو بار بار کہنا نہیں پڑتا، اس کو بار بار یاد دہانی نہیں کرانی پڑتی۔ نہیں نہیں، اس کو کہا نہیں جاتا کہ دیکھ تو نے مجھے کارگزاری ہی نہیں دی، حالات ہی نہیں دی، 12 سال ہو گئے کہتے 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 آخر کہنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر توجہات ایک طاقت بن کے سامنے آتی اور دل کی دنیا آباد ہوتی، اور توجہات اور دعاؤں کا صلہ کیا ملتا ہے اس غلام کی زندگی دیکھ لیں۔ اللہ نے بیٹھے بیٹھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دے دیے۔ یہ توجہات اور دعائیں ہیں، اس فقیر کی توجہات اور دعائیں تھیں اور ملی، اور اس نے اعتماد کیا اور رب نے اس کے بدلے 4000 درہم دیا، اور رب نے اس کے بدلے نعمتیں دی، غلامی سے نجات دی، اور رب نے اپنی ولایت اور اپنی دوستی میں قرب دیا اور بخشش کا سامان دے دیا، بخشش کا سامان۔ اور اس ایک بندے کی وجہ سے وہ مالک بن دینار بھی بخشے گئے، اور ان کے اہل محفل بھی بخشے گئے، اس کا آقا بھی بخشا گیا اور یہ بھی بخشا گیا۔ نہ میں پونکاں تو نہ میں ٹونکاں تو نہ میں شور مچاواں تو نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں، نیکوں کے ساتھ مل کے شاید میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش سے جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ آج دیوانے میرے سامنے بٹھا دیے، ایک اور بیٹھا ہوا ہے، مجبور ہے بےچارا، معذور ہے، اس کی رضا میں بندے ہیں، جس کو کیسے رکھے۔ بے نیاز چوں، بے نیاز چوں، اللہ عافیت کا معاملہ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفسیر۔ آج احساس ہوا کہ میں نے ایک تو اپنے ابا رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے کھوں کا واقعہ سنایا، اور ایک ان کا واقعہ سنایا کہ قلعہ میان سے کے درویش، کیا نام، نام بھول گئے، ساری زندگی یاد رہا، مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ اس نے کہا اس کو سوکھ سوکھ کے مار دے، اس کو سکا سکا کے ختم کر دے۔ ہماری زندگی میں اگر آپ عافیت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں تو زندگی کا کوئی راستہ تلاش کریں، یاد رکھنا، پھر موٹر وے پہ چلنا ہے تو موٹر وے کے اشاروں کو سمجھیں، بڑا بہترین سفر گزرے گا، اشاروں کو سمجھیں۔ اور زندگی کی موٹر وے پہ چلنا ہے تو جگہ جگہ پہ جو حفاظت کے اشارے ہیں ان کو سمجھ کے چلے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہر کام میں کے وقت، حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی جنات تم میں سے ہر چیز تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر کام میں، ہر معاملے میں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جنات تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہذا کھانا کھاتے وقت جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے مت چھوڑے۔ ہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بالکل گندگی ہے اور لقمہ صاف نہیں کر سکتا، وہ مجبوری کی اور بات ہے۔ مجھے دے دے کاغذ، یہ دیکھیں اس بندے کی توجہ کاغذ لے کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے اثر کر رہی ہے، مسلسل اثر کر رہی ہے، یہ کاغذ لے کے بیٹھا ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرا مسئلہ حل کر دیں، 10 چھوڑ دیں۔ میں نے کہا ہے آپ کی توجہ اثر کرتی ہے، دیکھیں یہ بندہ کاغذ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے بڑا کہا یہ ہاتھ یوں کر لیں، یوں کر لیں، اب میں نے کاغذ لے لیا، میں کیا کروں؟ دیکھیں एक है कि एक बंदे का जवाब दो, एक है मेरे सामने इस वक्त बिला मुबालगा लाखों लोग मेरी बात सुनते हैं, लाखों के मसाइल है। अच्छा सच्ची बात बताऊं, अगर यही रुक के देने वाले, खड़े होने वाले, अगर मेरी बातों पे तवज्जो करें ना, अल्लाह इनके सवालों के जवाब इनको अब तक दे चुका होगा या मिल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, उसमें मेरे कश्म का कमाल नहीं है, मैंने पहले कहा है, आप हजरात की तवज्जो, उसका असर अल्लाह मेरे दिल में डालता है, उसकी वजह से मेरी जुबान से अल्लाह वो बुलवा देता है। कौन बुलवाता है? कौन? एक औरत आका की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपने बेटे को बीमारी की हालत में, कि मेरे बेटे को जनून आरिस हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जहनी उलझने, परेशानी में मुबतला हो गया, ये हमको बहुत तंग करता है, ये तंग करता है। मुझे ये बताओ, मगरब में आप मशरक में रहते हैं, मशरकी हैं, मगरब से मुराद अंग्रेज, फौरे मगरब में पागल ज्यादा है या आपके यहां ज्यादा है? यहां तक कोई कोई पागल खाना है, कोई कोई। मैं अभी सक्कर में ना अपने बच्चों को गौशाला ले गया, मैं कहा बेटा तुम्हें गौशाला दिखाओ, गायें खड़ी हुई हैं, कहने लगे जबा, मैं कह नहीं करेंगे, ये खड़ी खड़ी खिदमत करते करते मर जाएगी, उठा के सामने दरिया सिंध में डाल देंगे। गौशाले, और हमारे लाहौर में भी दो चार गौशाले अब बन गए हैं, जहां बूढ़े मां बाप को जमा करा देते हैं। गौशाले का असल में कॉन्सेप्ट यह है कि जो गाय है वो उठा के गौशाले दे आओ, नकारा है या कारामद है, गौशाले दे आओ, ये गौशाले का कॉन्सेप्ट है। पंजाब में गौशाले वीरान हो गए हैं, सिंध में अभी भी आबाद है, मैंने एक जगह और भी देखा, टंडो आदम आबाद है, सिंध में आबाद है, मंदिर भी आबाद और गौशाले भी आबाद है। मैंने कहा देखें ये बेटा गौशाले है, गायें लाइन लगी हुई थी, उनके खादिम थे, एक बंदा गिर के मेरे पांव पड़ गया, पड़ा रख के दो, मैंने कहा मौला बचा मुझे, उनका खादिम था, उसे पता चला कि लाहौर के पीर साहब आए हैं, उसने मुझे मेरे पांव में पड़ा, ऐसी मेरी तबीयत खराब हुई, अल्लाह से डर लगा मुझे, अल्लाह माफ कर, उसको उठाया। अब सुनिए, एक औरत आका की बारगाह में अपने बेटे को लेकर आई, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को जनून हो गया, बहुत तंग करता है, आजकल की नस्लें मेरे पास इतने केस आ रहे हैं, एंग्जायटी, स्ट्रेस, पागलपने में, टेंशन में, नस्लों को खासतौर पे जवान आजकल के बहुत ज्यादा इस पे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने डाडर के पागलखाने में, मानसरा से आगे चबूड़ी के साथ डाडर का पागलखाना मैंने वहां देखा, 600 पागल थे, अक्सरियत जवानों की, ये सामने जेल रोड पे हजारों पागल हैं, हजारों, औरतें भी मर्द भी, 24 एकड़ में पागल खाना है ये, सामने आपके जेल रोड पे, वहां भी देखे तो जवान देखे, गया हूं वहां चंद बार गया हूं, जवान देखे, जवान को लेके आए कि बहुत तंग करता है, पागल है, जिसे आज के दौर पे आप नफ्सियाती उलझने कहें। तो हुजूर ने सीने पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई, सीने पर हाथ फेरा और मेरे आका कमली वाले ने दुआ फरमाई, और उस वक्त उस लड़के ने काय की, उसके पेट से स्याह कुत्ते के बच्चे की तरह कोई चीज निकली और वो ठीक हो गया, वही जिन्नाती शैतानी चीज थी जो उसके पेट से निकली, वही चीज थी। अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक शायर की बीवी को जिन की मिर्गी हो गई, पागलपना, مسائل، مشکلات، ذہنی ٹینشن، بچوں سے دل نہ لگنا، ہر وقت لڑنا، جھگڑنا، ٹینشن، دورے پڑنا، اس طرح کے مسائل شروع ہو گئے۔ جو عامل حضرات کرتے ہیں، پھر اس نے عورت کے اندر بولنے والا جن سے پوچھا، تیرا مذہب کیا ہے؟ ایک عامل لے آئے، انہوں نے کچھ تھونکا، جھاڑ پھونک کی، اس نے، میں مسلمان ہوں۔ شاعر نے پوچھا، تو میری بیوی پر کیوں مسلط ہے، حالانکہ ہم بھی تیری طرح کے مسلمان ہیں؟ جن نے کہا، تیری طرح میں بھی عورت کو پسند کرتا ہوں، یہ گھر میں ننگے سر پھرتی تھی، میں مجھے اچھی لگی، مجھے میں قابض ہو گیا، تو عورت کو پسند کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ یہ گھر میں ننگے سر پھرتی تھی، مجھے اچھی لگی۔ علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ میں ان کی زندگی کا تجربہ عرض کر رہا ہوں، ان کی کتاب کے حوالے سے، ان کی کتاب کے حوالے سے۔ بالوں کے ساتھ بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں، بہت انوکھے واقعات ہوتے ہیں۔ میں باز گوشت، باز جناش گوشت کاٹے جانے اور جانور ذبح کیے جانے والی جگہوں پہ اس لیے رہتے ہیں، وہاں ان کو خون کے بخارات سے غذا ملتی ہے، ان کی غذا ہی خون سے اٹھنے والی وہ مخصوص بو ہے، وہ مخصوص بو۔ اس میں ایک واقعہ سنا، یہ واقعہ بعد میں پورا کرتا ہوں۔ میں نے ایک ساتھ سے عرض کیا کہ ان کے نا بچے کو کینسر ہو گیا، انہیں کہ جی کینسر ہو گیا، خون بار بار بدل رہے ہیں، اس کے خون پورے جسم کا خون بدل رہے تھے، بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے بھیک مانگ مانگ کے خون لے آتا، پیسے، غریب سفید پوش، کینسر ہو گیا۔ یہ واقعہ بڑا آپ کو بہت کچھ دے گا جو میں سنا رہا ہوں۔ جو میرے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کریں، گائے، بکرے، اونٹ جتنے زیادہ ہو سکیں ذبح کریں، صدقے کریں اس کے، اور مال کے صدقے کریں۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا تو پراپرٹی ہے؟ اس نے کہا جی سفید پوشی ہے، کچھ نہیں، ایک پلاٹ ہے۔ میں نے کہا بیچ دے، اولاد نہیں ملے گی، پلاٹ مل جائے گا، بیچ، جتنے لاکھ کا بکتا ہے بیچ دے۔ اس نے بیچ دیا میرے کہنے پہ۔ مجھے کہنے لگی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ کرنا۔ میں بھائی تیرا کام ہے، یہ میرے ذمہ نہیں ہے، نہ مجھے گوشت چاہیے نہ مجھے پیسے چاہیے، تو بس جتنا ہو سکے تین کام کر، روٹی کے اندر حلوہ ڈال کے یہ کھلا، ہر بندہ کھا سکتا ہے، ایک۔ دوسرا، ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں یہ شیرینی کے بارے میں کہتے تھے، فرماتے تھے، ایسے نہیں ہیں، ہمارے اکابری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیرینی تقسیم کرے، میرے اکابر جو لکھتے ہیں حق لکھتے ہیں۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ مالی مدد کر ضرورت مندوں کی، ایسے جو سوال نہیں کرتے، جو سوال کرتے ہیں ان کو ایک پیسہ نہ دینا، ان کے تو بینک بیلنس ہوتے ہیں بڑے طاقتور قسم کے۔ اور تیسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ اونٹ، گائے یا بکری، بھیڑ بکری، یہ ذبح کر اور بہترین انداز میں اس کا گوشت یا کھانا پکوا کر، گوشت یا کھانا پکوا کر لوگوں کو کھلا، غربا مساکین کو کھلا۔ ایک چیز میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا جس وقت پہلی چھری کی دھار اٹھتی ہے نا، جو پہلی دھار اٹھتی ہے خون کی، جانور کی پہلی دھار اٹھتی ہے، وہی دھار جنات کی غذا ہے، وہی دھار۔ اور اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، اس خون میں ایک مخصوص بو ہوتی ہے، ایک مخصوص بو ہوتی ہے جو صرف اس خون کی ہی ہوتی ہے، وہ شاید اور کسی چیز میں نہ ہو۔ میں نے کہا اس دھار کو تو نے کچھ نہیں کرنا، میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا وہی دھار جنات کی غذا ہوتی ہے، کتابوں میں محدثین نے، فقہا نے، عاملین نے، اکابر نے، اللہ والوں نے یہی لکھا ہے۔ جن کو جنات نظر آتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ جنات لپک لپک کر اس پہ اپنا منہ رکھتے ہیں اور اس خون کو پیتے ہیں، اور خون کی بخارات اور بھو کو پیتے ہیں، اس کی روح کو پیتے ہیں۔
अच्छा, उस बंदे ने मुझे अजीब बात बताई, उसकी बच्ची थी, उसको जिन्नात नजर आते थे, और वो बच्ची कहती थी कि अब्बा भाई के साथ ना जिन्नात हैं, ऐसे जोंकों की तरह आप खून डलवाते हैं, वो पी के चले जाते हैं। आपने ना कभी जोंके कम देखी है? जोंके पहले गलियों मोहल्लों में ना ये पखीवास और ये फिरते थे, ये जोंके लगाते थे घुटनों पे, इसमें वो कीड़ा होता है ऐसे चिपक जाता है, फिर खून चूसना शुरू कर देता है, इतना मोटा हो जाता है, गुप्पा बन जाता है इतना एकदम वेड़ा हो जाता है उसके ऊपर, ऐसे जाके लगता है और खून चूसता है, और फिर जब भर जाता है खुद बहुत गिर जाता है। ये जोंके होते, कहने लगे वालिद को कहने लगी, अब्बा मैं देखती हूं कि भाई को जोंके चिपकी हुई है कोई, और इसको जब आप खून लगवा के आते हैं वो जोंके एकदम पता नहीं कहां से आ जाती हैं, इसका सारा खून पी लेती हैं, फिर खून खत्म हो जाता है, फिर आप और खून लगवाते हैं। वो कहते हैं छोड़ छोड़, तू तो ऐसी बातें कर ली, छोड़, घर की मुर्गी वैसे दाल बराबर होती है। वो तख्त पे जो है ना बाबा जी उड़ते हुए आए, उन्होंने कहा तू भी है? वो एक पीर साहब थे तख्त तोड़ते हुए, उन्होंने कहा मैं था। उन्होंने कहा मैं भी कहूं एक तख्त पाव टूटा हुआ क्यों था? शोहर को नहीं मानना। उन्होंने कहा तू भी है? मैंने एक बुजुर्ग देखा था तख्त से उड़ता हुआ आया था। तो वो कहती रहती थी, और कहती हमारे घर में कोई गैर मरी चीजें ऐसी कुत्ते बिल्ले इस किस्म की फिरते हैं, हमारी चीजें खाती हैं, हमारी दवाओं के अंदर से असर निकाल के खा जाती हैं, और हम दवाओं की फोक खाते हैं। यहां तक देखा, अल्लाह की बाज बंदे ऐसे होते हैं उनसे अल्लाह ने पर्दे हटा दिए। मुझे एक चीज बताएं, जिस रब ने पर्दे रखे हैं वो हटा ले कादिर है या नहीं? जिसने पर्दे रखे हैं, हम जिन्नात को नहीं देख सकते, हम कब्र का निजाम नहीं देख सकते, हम फरिश्तों को नहीं देख सकते, रब के गैबी लाहौती मलाकूती निजाम को नहीं देख सकते, वो करीम है जिससे पर्दे हटा दे, जिससे दे दे, जिससे हटा दे। कई वाकियात हैं, कई बंदे, बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग होते हैं अल्लाह जिनसे पर्दे हटा देता है, बहुत खाल खाल, कोई कम कम। वो बच्ची देखती थी, और पैदाइशी उसके साथ निजाम ने था, उसने कोई वजीफा नहीं किया था, उसने मुशिल्ला नहीं काटा था, बस पैदाइशी निजाम था रब की तरफ से, रब की तरफ से। उस बच्ची ने अजीब बात कही, जब अच्छा उससे ना मेरी ये बात जहन में रह गई, जिसकी वजह से ये बात सामने आई। मैंने कहा था जब पहली धार निकलती है उस वक्त जिन्नात मुंह लगाते हैं, चूसते हैं, और वो खून का वो अंदर जौहर, एक्टिव प्रिंसिपल, वो जो खून जिस्म का जौहर है, खुद जून का भी एक जौहर होता है, वो जिन्नात पी जाते हैं और खून भी पीते हैं। तो उस बच्ची ने ना, उन्होंने जिस वक्त पहला जानवर घर में छुरी फेरी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो किसी को देना नहीं है, मदरसे में यतीम खाने में मत देना, खुद जबा करो, जबा करने वाली छुरी तेज हो, बावजू आदमी हो, नमाजी आदमी हो, और तकबीर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पूरी ऊंची कहे, हलाला ठीक हो, हलाल ठीक हो ख्याल करना, यहां बड़े मुगलते पड़ जाते हैं। जिस तरह जकात सदका खैरात निकालते तो हैं, देते ऐसी जगह है जहां नहीं देनी चाहिए थी, जो कपड़ा लगा दे वहां दे देते हैं, फिर कहते हैं हमारे ऊपर मुसीबतें हैं, परेशानी है। भाई वो जाए जगह गई ही नहीं, जहां खर्च होनी थी वहां खर्च ही नहीं हुई, तो जब खर्च ही वहां नहीं हुई तो अल्लाह की मदद तो नहीं आएगी, अजाब तो ना टला। फिर कहते हैं हम देते हैं अजाब, अजाब आते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसी जगहों पर लगवाया जहां लगाने की जगह थी, मैं नहीं लेता, कहीं नहीं ना मैं लेता हूं, मैं नहीं लेता, तो वाकई उनके अजाब टले। उस बच्ची ने दूर से खड़ी थी, जिबा होने से ना डरती हैं बच्ची, आए आंखें बंद कर लेती, दूर से देखा तो दौड़ती हुई आई। अब्बा वही बलाएं जो घर में फिरती हैं, वही जोंके जो भाई को आके खून पीती हैं, वो सारी जमा होगी, इसका खून पी रही हैं, वो देखो वो देखो वो सारी
उसे फिर जाके बात लगी, बच्ची चीख कहती है मेरी, असल में मेरी बात ना उसने बच्ची की बात से टैली की। देखो बच्ची ठीक कहती है, मैं अब तक इसका जहनी खलल समझता रहा, इसका वहम समझता रहा, ऐसी बातें करती है, मुझे आके उसने बताया। अच्छा अगली बार सुने, जब उसने मुसलसल ये किया ना, दूसरे लफ्जों में जो खून उसके बेटे का पीना था उसका बदल उन्हें दे दिया। आओ भाई तुम्हें खून चाहिए ना, तुम्हें खून देते, फ्रेश खून चाहिए, फ्रेश खून देते, पियो जितना जी में आए पियो। एक बकरा, दूसरा बकरा, तीसरा बकरा, गाय, जो जानवर जबा कर बेहतरीन बनाओ, गोश्त है गोश्त दो, खाना है बेहतरीन पकाओ खिलाओ। अल्लाह की मखलूक गुरबा मसाकीन मजदूर लोगों को, रिश्तेदारों को भी खिला सकते। अब वो हर दफा बच्ची ये कहती, कोई दसवां बारहवां जानवर था तो बच्ची कहने लगी, अब अजी वो अब बलाएं थोड़ी हो गई हैं। और उधर बच्चा भी ठीक होने लगा, कहने लगे जी पहले जो खून हफ्ते के बाद लगवाते थे अब 2 हफ्ते हो जाते हैं, क्योंकि पीने वाले थोड़े हो गए। अब देखिए एक गैबी नजर है, कहने लगा सुनो जरा गौर से, ये मैं जो आप लफ्ज कह रहा हूं गौर से सुनिएगा, ट्रेन चल पड़ी हो और आप खिड़की में बैठे हैं और एक अकीदतमंद बंदा कहता है कि हजरत मुझे सारा दीन सिखा दे। दीन सारा, जो 23 साल की वही है और जो सदियों से दीन खुलता खुलता हम तक पहुंचा है, तुझे चलती ट्रेन की खिड़की में से मैं सुना दूं, दिखा बता दूं समझा दूं। तो कहा अगर कोई मुझसे कहे चलती ट्रेन की खिड़की पे कि वो बाहर भाग रहा, ट्रेन चल पड़ी है, स्पीड पकड़ रही है, और कहते हैं मुझे सारा दीन सिखा दें, तो सारा दीन 2 लफ्जों में है, सारा दीन 2 लफ्जों में है, वो है मुशाहदे का इनकार, गैब का इकरार, सारा दीन 2 लफ्जों में है। इसकी वजाहत करता हूं, मुशाहदे का इनकार, गैब का इकरार, मेरी आंखें जो देख रही ये धोखा दे सकती हैं, गैब की खबरें देने वाले मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हक हक और हक। मुशाहदे का इनकार, इसकी दूसरी मिसाल, शरीयत कहती है कि 100 में से 2.5 रुपए दे, हम माल बढ़ा देंगे, हिफाजत कर देंगे, नस्लों को रिस्क दौलत तमंगरी दे देंगे, माल में से जिम्मेदारे में से उशर दे और पूरा तोल के दे और गिन के दे और ओलामा से पूछ के दे, हम तेरे जिंदगी में नस्लों में रिस्क देंगे। मुशाहदा तो कहते हैं 100 में 2.5 कम हो गया, गैब कहते हैं नहीं बढ़ गया। मुशाहदे का इनकार, गैब का इकरार, चलती ट्रेन में खिड़की में तुझसे कोई कहे कि हमें दीन सिखा और पूरा का पूरा सिखा, और हकीम तारिक की तस्बीह खाने में बातें भी उसे समझ आएंगी जो मुशाहदे का इनकार करेगा और गैब का इकरार करेगा, मेरी बातें भी उसी को समझ आएंगी, वरना मजाके बनाएंगे, लोगों को पागल बना रहा है, अपनी दवाइयां बेच रहा है, अपनी इश्तिहारबाजी रंगबाजी कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है। और जिसको मुशाहदे का इनकार होगा और गैब का इकरार होगा वो कहेगा नहीं दुकानदारी नहीं ईमानदारी है। ये सारी बातें जिन्नात की, खून की, चूसने की, आका का फरमान, हजूर ने सर सीने पर हाथ रखा अपना हाथ मुबारक और उसके अंदर से बला निकली, जवान ठीक हो गया, फला ठीक हो गए, ये सारे के सारे हैं जो मुशाहदे का इनकार है। अब कहते हैं तारिक क्या कहता है तू, हमें कहां नजर आता है कब्र का निजाम मुशाहदे का इनकार, जिन्नात मुशाहदे का इनकार, जादू मुशाहदे का इनकार, फरिश्ते मुशाहदे का इनकार, पर गैब का इकरार, बरकत मुशाहदे का इनकार, हलाल मुशाहदे का इनकार। कुत्ती बहुत बच्चे देती है तो इसी में होगी, सूरनी बहुत बच्चे देती है, किंड होते हैं उसका, वो लैन लगी होती है, पर मुशाहदा कहते हैं नहीं, मुशाहदा कहते हैं हाँ, गैब कहते हैं नहीं। मुशाहदे का इनकार और गैब का इकरार, यह है योमिनूना बिलगैब, ईमान लाया गैब पे। मुशाहदा कहता है रब दिखा कहां है, दिखा रब, बुलाओ अपने रब को कहां है। गैब कहता है हम हैं, हमारी लाठी अंधी नहीं है, हम वक्त का इंतजार करते हैं। मुशाहदा कहता है तू ये चीज भी एक ही है, ये चीज भी एक ही है, ये रिस्क हराम है, ये रिस्क हलाल है, इससे बरकत नहीं है, इसमें बरकत है, कहां है। मुशाहदे का इनकार कर, कहा नहीं मैं हलाल खाऊंगा, गैब ने कहा इसमें बरकत है। एक खातून कहने लगी मुझे एक अंग्रेज कहने लगा तुम खिंजीर को क्यों नहीं खाते, उसने कहा तू कुत्ता क्यों नहीं खाता। लगा बस उसने कहा समझ आ गई मुझे, बस उसने कहा तुम खिंजीर क्यों नहीं खाते, उसने कहा तो कुत्ता क्यों नहीं खाता, अंग्रेज कुत्ता नहीं खाता, एक मखसूस कौम है जो कुत्ता खाती है, कुत्ता क्यों नहीं खाते। गैब का इकरार, मुशाहदे का इनकार। तो क्या बात कर रहा था, हाँ बलाएं कम हो गई और बच्चा ठीक होना शुरू हुआ। वो मुशाहदे की आंख बेटी की खुली थी, अल्लाह ने खोल दी और मुशाहदे की आंख उसकी खुली थी। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ पे मैं अगर लिटरेचर इकट्ठा करूं तो 200 सफों की किताब बन जाएगी। उनके कश्फ के ऊपर जो अपनों ने फतवे दिए, खुफ्तियां कसी, मजाकें की, एतराज किए, दुकानदारी कही, उस दौर के मैगजीन, मैं किताबी कीड़ा हूं, चीजें इकट्ठी करता रहता हूं, उस दौर में जो लोगों ने हजरत लाहौरी पे एतराज किए कि वो अपने कश्फ का इजहार करते थे कि ये चीज का कश्फ है, ये चीज का कश्फ है, मेरे सामने रोटियां ला के रखो, हलाल की भी हराम की, तो मैं छांटी करके दे दूंगा। उस दौर के लोगों ने जितने एतराज किए और जितनी कहानियां बनाई और जितना अल्लाह के वली को बुरा भला कहा, अगर वो तहरीरें जमा करें सारी तो एक अनोखी किताब बन जाएगी। लेकिन सारे मिट गए, वो कलंदर जिंदा है, बुलिया असी मरना नहीं, वो रुपया कोई हो, वो कलंदर आज भी जिंदा है और कलंदर जिंदा रहता है और दुर्वेश जिंदा रहता है कि बुलिया असी मरना नहीं, गो रुपया कोई हो। कब्रों में कोई और जाते हैं, अल्लाह का वली हमेशा हयात और जिंदा होता है। अल्लाह के वली को मौत नहीं है, इंतकाल है, एक निजाम से मुंतकिल होकर दूसरे निजाम में चला जाता है। कहने लगे अब्बा वो चीजें कम हो गई हैं, वो चीजें कम हो गई हैं, क्या हुआ। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे आके कहने लगा, मैंने कहा इंशाल्लाह सेहत होगी, अल्लाह देगा सेहत देगा, मेरे रब ने कहा कुरान में और अल्लाह का हबीब का फरमान है कि सदका बलाओं का रद्द है, सदका आफतों का रद्द है, सदका बड़ी से बड़ी मुसीबतों को खत्म करता है और सदका बड़े से बड़े गुनाहों से बंदे को नजात देता है और सदके से बीमारियां आफतें टल जाती हैं, सदका इलाज है, सदका हीला है, सदका ट्रीटमेंट है, सदका तरतीब है, सदके से इलाज कर, आ जान लगाई, माल लगाया, वक्त लगाया, टेस्टों पे, दवाओं पे, बड़े बड़े लंबे सफर पे, बड़ी बड़ी चीजों पे, कभी उतना जान माल लगा सदके पे और ऐसे लगा के तेरा अंदर हिल जाए, इधर तेरा अंदर हिलेगा, इधर अर्शे इलाही हिलेगा, इधर फैसले तेरे हक में हो जाएंगे। वकफा बिल्लाह वलीयम वकफा बिल्लाह नसीरा, करके देख सौदे रब के साथ। टेस्टों के नाम पे तो तू तेरा हाथ नहीं कांपता, दवाइयों के नाम पे तेरा हाथ नहीं कांपता और इलाज के लिए जो सफर पे खर्चा होता है वहां तो हाथ नहीं कांपता, वहां तो चीजें बेचनी पड़े तो बेच देता है, और सदके के नाम पे जब तुझे कहा जाए तू कहता मैं तो मकरूज हूं, और कहते पांच दस में मेरी जान छूट जाए, पांच दस रुपए मेरी जान छूट जाए। पांच दस रुपए में जान छुड़ाना चाहता, मेरे रब को हमारे माल की जरूरत नहीं है, बल्कि अंदर का जज्बा मेरा अल्लाह देखता है कि इसका अंदर जज्बा क्या है। इल्ला बेकल्बिन सलीम, दिल, वो दिल मेरा रब देखता है। और फिर एक वक्त आया कि बच्ची कहने लगी अबा अब तो कोई भी नहीं है, जिसने उन्होंने कहा ना, मैंने कहा मन कर दो। मुझे कहने लगा अभी प्लाट के पैसे बचे हुए हैं, मैंने तो अल्लाह के लिए नियत की थी, मैंने कहा अब हफ्ते में चलो एक कर दिया कर, अब हफ्ते में एक कर दिया कर, और बाकी माल भी अगर अल्लाह के लिए किया है तो फिर ठीक है, इसे गरीब रिश्तेदारों में, मसाकीन में, गुरबा में, जरूरतमंद तलाश करो, स्मेल करो, उनको महसूस करो, उन पे तकसीम करो, उनको दो। वो कैंसर, ब्लड कैंसर कहां गया, वो जिंदगी कहां गई, कौन बचता है ब्लड कैंसर से, सब ठीक ठाक। मेरे पास एक मालदार की बीवी आई, मैं उसका नक्शा थोड़ा सा खींचता हूं, बहुत बड़ा मालदार और सूबे का एक बहुत बड़ा अफसर था। गाड़ी से उतरी, अच्छा उसे पता नहीं मैं हकीम हूं, मेरा क्लिनिक था, मैंने भी उसी सीढ़ियों में घर में प्रैक्टिस ऊपर करता था, तो मैं भी सीढ़ियां से ऐसे जाना था, तो वो कहने लगा सर राइट, बेगम को एक अफसर था, क्योंकि वो बहुत बड़े अफसर की बेगम थी और बहुत बड़े मालदार की बीवी थी, सर राइट यानी आपने दाएं मुड़ना है, अब यहां सीढ़ियां राइट हैं, सर लेफ्ट अब लेफ्ट मुड़ना है, सर बस यहीं, बेगम को सर कह रहा था, मैं पीछे चुप करके सुन रहा था, जा रहा था। उसको ब्लड कैंसर था, उसने विग लगाई हुई थी, भवों की जगह वो लगाई हुई थी काजल नुमा कुछ चीजें, कीमो करा करा के बाल सारे उतर गए थे और ब्लड कैंसर था। उसे कोई पता मुझे आपको नहीं लग रहा था कि उस माई को कोई चीज है, बेहतरीन लिबास विग हर चीज लाजवाब, कहने लगी ब्लड कैंसर है, इलाज मुमकिन? मैंने कहा 100%। कैसे? बड़े कमाना आड़राना अंदाज में मुझसे कहने लगी, आंखों में आंखें मिला के, कैसे? बेशुमार केस है, दिखाएं, इंग्लैंड से आई हूं, अमेरिका से आई हूं, इलाज करा के, पैसों की कमी नहीं है, जितने मांगोगे दूंगी। और आपको गाड़ी चाहिए? मैंने कहा आपको कितनी चाहिए? मैंने कहा मेरी मालूमात में आप फिनेंशियली बहुत वीक थी, मैं बाप दादा परदादा से खुशहाल बेटे का घराना हूं, ऐसा ना कहना गाड़ी की बात। वो एक अफसर की बीवी उसे लाई थी, उसने हाथ ऐसे किया, जलाली बादशाह फकीर है चुप कर अभी भगा देगा, उसने ना उसका हाथ पकड़ा, कोई केस दिखाएं। मैंने कहा मैं आपको सेल दे दूंगा, आप पता कर लें, वैसे इलाज के सिलसिले में ऐसा होता नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी दूंगा। क्या दवाई देंगे? कोई दवाई नहीं दूंगा, अल्लाह का नाम दूंगा और सदके की तरफ, वो मैं बहुत करती हूं सदका। मैंने कहा जो तरतीब मैं बताऊंगा वो करनी होगी, चलो बता दे। और उसका अंदाज मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि अल्फाज के तर्जमे हो सकते हैं, कैफियात के कभी तर्जमे नहीं होते, कभी नहीं होते। इतना प्राउड, इतना उसके लहजे के अंदर अजीब और गरीब दुनिया थी। मैंने कागज कलम उठाया और मैंने कहा लफ्ज पढ़े सारा दिन, हामीम ला युन सारून, ये पढ़े सारा दिन पढ़े,
और रोजाना 2 रकात नमाज नफिल तौबा के पढ़े। मैंने कहा मैडम कोई ताकत है जो आपके पीछे है, मेरी रूहानी नजर देख रही है और कोई आहें हैं, कोई फुगा है जो आपका पीछा कर रही है, शायद आप ना बच सके। मैंने कहा आपके साथ जो खातून है कई साल से मेरे पास आती है, शायद उनको मेरी बात समझ आए और वो आपको समझा दे, उसके लिए 2 रकात नमाज नफिल तौबा के सुबह शाम पढ़े और हर नमाज के बाद नफिल के बाद 1 तस्बीह इस्तिगफार करे। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, चुप करके बैठ गई, ऐसे बोल नहीं रही थी, इशारा करके जी ठीक है। और दूसरा हामीम लायुन सारून बहुत ज्यादा पढ़े, दिन रात पढ़े। और तीसरा आपके कोई बाप दादा की जायदाद है? मैंने पूछा क्यों। मैंने कहा वो बिकवा के उसका सदका करवाना चाहता हूं जो मौजूदा माल है, ये नहीं कि इस माल के अंदर मुझे शक है, मशकूक माल है आप इसका, और वो भी वो जायदाद हो जो कि वाकियातन रिस्क के हलाल से ली हुई हो। अगर वो अपनी जिंदगी के लिए बेच लें, जायदादें बेबहा मिलेंगी पर आप बच जाएंगे। कहने की ऐसी कैद कयूद मुझे आज तक किसी पीर ने नहीं बताई। उसको बड़े गुस्से में कहने की किसकी पीर के पास मुझे लाई है। मैंने कागज उठा के अपने पास रख दी। मैंने कहा मेरे पास तो यही इलाज है, मेरी मर्जी से चलना होगा। वो कहने लगा सर दे दे बस ये तो ऐसी है। वो तू पागल है, आपस में सहेलियां थी, तुझे मैं लाई हूं भरोसे पे, तुझे पहले भी समझा के लाई थी, पागल है। मैं कहा मेरा तो इलाज यही है, पागल हूं, पागल हूं जैसा इलाज है, करता अल्लाह है, मैं कौन सा कहता हूं, मैं करता हूं। ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, अल्लाह ही करता। उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। और मुझे उस खातून ने बताया, खड़े खड़े गिरी और मर गई, कहा कि मैयत पड़ी हुई थी, खामोश, घर में खामोशी थी और कोई एक बंदा नहीं रो रहा था, एक बंदा। बहू की शादी करके लाई थी, बहू ने काला स्ट्रेस पहले से बनवा के रखा हुआ था, उसने काला लिबास पहना हुआ था बहू ने, और घर में खामोश और कोई जनाजे पे लोग बहुत कम, बस चुप करके जमीन की अमानत, मिट्टी की अमानत, मिट्टी के हवाले कर दी। ये एक कहानी है जो मेरे साथ बीतती रहती है, वाकयात होते रहते हैं। कहने लगा बा अब नहीं है, मुझे कहने लगा माल है। मैंने कहा तकसीम करो और एक जानवर हर हफ्ते जबह कर दिया करो। याद रखिएगा मेरी बातें सिर्फ उसी को समझ आएंगी जो मुशाहदे का इनकार करेगा और गैब का इकरार करेगा। और मेरे कमली वाले की बातें भी उसी को समझ आई थी। हां मुशरकीन के यही झगड़े थे सारे, जो झगड़े मैं लेके बैठा हुआ हूं, उन्हीं को समझ आई थी जिन्होंने मुशाहदे का इनकार किया था, ये बुत कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्हें कि ये ला, और झगड़ा सारा का सारा इसी पे था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे झगड़ा नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे झगड़ा था। सुलह हुदैबिया पे हज़रत अली ने इनकार कर दिया, या रसूल सल्लम मेरी गैरत और जुर्रत क्या इश्क था मुस्तफा से, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को सुभान अल्लाह। मैं के उन्होंने लिखा ना कि मोहम्मद रसूल, ना करना इसी पे तो झगड़ा है, इसको खत्म करें और लिखे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अल्लाह के हबीब उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और ये इंसानियत के लिए अल्लाह ने एक दलील बना के भेजी थी। मेरी बात याद रखना, अगर पढ़ना लिखना जानते तो वो कहते खारों में जाके खुद कुरान बना के ले आए। ये इल्जाम था, उसके बावजूद भी मुशरिकीन देते थे। एक शेर मेरे आका ने फरमाया था, हज़रत अबू बकर ने फरमाया हुजूर अगर गुस्ताखी माफ तो एक अर्ज कर, बोले मैं शेर का वजन ठीक नहीं है, मेरे हुजूर तो एक शेर भी नहीं कह सके। क्यों? खुद मुअल्लिम मेरा रब था,
اور اللہ نے بتا دیا تھا انسانیت کو اگر ان کو دنیا کے زہری علوم میں پڑھا دوں پھر تم کہو گے یہ غاروں میں جا کے خود بنا کے لے آتے ہیں قرآن کو، جبکہ قرآن میری کتاب ہے اور میں نے اپنے حبیب کو امی پیدا کیا ہے، ایک لفظ پڑھے ہوئے نہیں ہے لیکن کائنات کے علوم مخلوق کو بانٹ رہے ہیں اور کائنات کے سارے علوم ملے در مصطفیٰ سے ہیں اور آئندہ بھی در مصطفیٰ سے ملیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں کہا جھگڑا تو اسی پہ ہے، حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہے لکھا ہوا محمد محمد الرسول اللہ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے مٹا دیا، فرمایا لکھو ان کی ساری شرطیں مان لو، لکھو محمد بن عبداللہ. یہ صلح حدیبیہ کی بات کر رہا ہوں. کچھ غیبی نظام ایسا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور میرے ساتھ چلنے والے غیب کا اقرار اور مشاہدے کا انکار. سارے دین کا خلاصہ ہے یا نہیں ہے؟ چلتی ٹرین پہ کیا لفظ کہا؟ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، سارے دین کا خلاصہ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت شیخ الہند کو خواب میں دیکھا اور میں نے شیخ الہند سے پوچھا کہ مجھے دین کا خلاصہ بتائے، تو یہ شیخ الہند نے یہ بات فرمائی کہ دیکھ اگر دین کا کوئی تجھ سے پوچھنا کہ خلاصہ کیا ہے تو سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، سارے دین کا خلاصہ یہی کہ مشاہدے کا اور غیب کا. مشاہدہ تو کہتے کہوں آکسیجن ہے، بتاؤ دکھاؤ اس حال میں مجھے آکسیجن دکھاؤ. آپ کے موبائل کا نیٹ ورک یو کا ہے، وارد کا ہے، ٹیلینار کا ہے، جائز کا، کوئی دکھاؤ اس کی لہریں دکھاؤ، اس کی ریز دکھاؤ، اس کے سگنل دکھاؤ مجھے کہاں ہے. بجلی کی تار میں مجھے کرنٹ دکھاؤ، اپنے جسم میں جان دکھاؤ، اور پھلوں میں وٹامن دکھاؤ، پاور دکھاؤ، طاقت دکھاؤ. اس میں کہتے ہیں پالک میں، انار میں آئرن ہے، مجھے وہ آئرن دکھاؤ، وہ کیلشیم دکھاؤ. یہاں تو ہم ساری مان لیتے ہیں، اور جہاں میرے کملی والے نے خبر دی ہے وہاں کہتے ہیں ہمیں دلیل دو. کہاں دلیل ہے؟ مجھے اپنے جسم میں وہ جان دکھا، جو جان نکل جاتی ہے تو یہ جسم یا چتا کے قابل ہے یا قبر کے قابل ہے. اب اس کو چھپا ورنہ اس کے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. اس جسم میں سے وہ جان مجھے دکھا، کہاں ہے وہ جان؟ وہ جان نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے. ہم مانتے ہیں جان ہے تو ہم نے تو مشاہدے کا انکار کیا ہے اور غیب کا اقرار کیا ہے. ہم مانتے ہیں آکسیجن ہے، ہم مانتے ہیں پھلوں کے اندر یہ پاور طاقت، سیب میں یہ کچھ ہے، گاجر میں یہ کچھ ہے، اور دودھ میں وٹامن کے ہے. میری بات تو صرف اسی کو سمجھ آئے گی، اور میرے کملی والی کی بات بھی اسی کو سمجھ، اور وہ میری بات نہیں ہے، میں تو مدینے والی کی بات کر رہا ہوں نا، میں تو ڈاکیا ہوں، اس لیے سمجھ اسی کو آئے گی جو عشق کی دنیا کے ساتھ چلے گا، جو محبوب اور معشوق کے راز و رموز کو سمجھے اور جانے گا. میری بات اسی کو سمجھ آئے گی، ورنہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. اعتراض کی نظریں اٹھیں گی، شک و شبہ کے وسوسے اٹھیں گے، سوچیں آئیں گی. میں ساری باتیں آپ کو اطلاعیں دے رہا ہوں. خیال کرنا، خیال کرنا، لٹ نہ جانا. لٹ نہ جانا. ہمارے آفس میں ایک جوان جاب کرتا تھا، آیا ایک جننی تھی. وہ کہتے پہلی جگہ ہے میں اتنے مہینے رہ گیا ہوں آپ کے پاس، پہلی جگہ ہے. اس کا نام نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں تو پہلے سے مجھے بتا دیتی ہے. تو انہیں جا کے فلاں انٹرویو کیا. سونا جوان تھا، خوبصورت تھا، بالکل ممی ڈیڈی کلین سے بہترین. وہ کہتے تو وہ جاب پہ گیا تھا نا، فلاں جا کے تجھ سے یہ سوال کریں گے، پہلے بتا دیتی تھی اور وہی سوال کرتے تھے. کہنے لگا آپ سوال بھی سن لیے اور جواب بھی کر لیے، پتری جاب نہیں ہونے دوں گی. کہا وہ کہتے تھے سب اب ٹھیک ہے، پر ہم نے کوئی اور بندہ سلیکٹ کر لیا. رشتے کے بارے میں، رشتہ تیرا میں کرواؤں گی،
है, मैं क्या करूं, है दुआ के आतिशे इश्क में तू भी मेरी तरह चला करे, न नसीब हो तुझे हंसना तेरे दिल में दर्द उठा करे,
तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा बस चले ना बुझा सके, तेरे भी दिल में हो ये दुआ कि ना घर किसी का जला करे।
एक साहब आए, मैं ऐसी बातें कर रहा था, उनके एक मामू थे, बहुत पढ़े लिखे समझदार थे, वो मुस्कराए और उसके बाद संचिता हो गए। मैंने देख लिया संचिता, जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कहा या अल्लाह ये जिननी जो इसके ऊपर डालते, पता नहीं कोई कबूलियत की घड़ी थी, हंस पड़ा। कहने लगा छोड़े बस इन बातों को, उससे गुस्सा आया मेरी बात पे, और वो भांजे को लेके आया था, बहन भी थी, वो भी था, उनका भी था, वो अकीदत रखते थे। मैंने कहा या अल्लाह जो जिन्नी इस पे है ना इस पे डाल, मैं कहा जा जिन्नी मैं तुझे हुक्म देता हूं, अगर अल्लाह के हाँ मेरी कोई औकात और हैसियत है और मेरी कोई नहीं है, मौला अगर कोई मेरा ऐसा मुरीद हो जिसकी तेरे हाँ कोई मकाम और हैसियत हो, तुम जिन्नी तुझे हुक्म देता हूं इसी को चिपक जा। एक बुजुर्ग थे ना, वो कहते थे मुझे मेरा अल्लाह पूछेगा क्या लाया, मैं कहूंगा अल्लाह मेरे पास कोई नेकी नहीं है, मैं अपना ये मुरीद लाया हूं। जैसे अल्लाह के अभी फरमाएंगे ना, अल्लाह कहेगा लाओ कौन, तो मेरा रब की बारगाह में मेरे आका मदीने वाले सिद्दीक अकबर को जब सवाल और जवाब के लिए पेश करेंगे, रब का सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पता नहीं मैं जलाल में आया, मैंने कहा अल्लाह मेरी कोई औकात नहीं, अगर कोई मेरा ऐसा मुरीद हो तेरी बारगाह में उसका कोई मकाम हो, तो उसी के वसीले से मैं जिन्नी तुझे कहता हूं। मैं जिन्नों को कहां जानू, मैंने अंधा तीर मारा हो, मेरी औकात क्या। वो एक जिम्मेदार था ना, उसको मौलवी साहब से गुस्सा था, एक जिन था वो जो भी आता था उसको रगड़ा दे देता था, किसी की टांग तोड़ देता, किसी का सर फोड़ देता, बंदे पे आता मोरता था नहीं जाता था। उसने क्या किया, उसने कहा वो फलां मौलवी है बड़ा पहुंचा हुआ है उसको ले आओ, उन्होंने कहा इसकी भी तबीयत ठीक कराऊं जरा मैं, उसने कहा उसको ले आओ, वो मानेगा नहीं मुझे कुछ नहीं आता, बड़ा बड़ा है फलां का ये हुआ, दो चार वाक्य सुना दिए। अब गए मौलवी साहब के पास, हजरत हमारे बेटे पे जिन्नात है हमारे घर पे, बहुत नुकसान देते हैं, आप आ जाए। भाई मैं तो मदरसे का मस्जिद का मौलवी हूँ, अल्लाह अकबर वाला मुसल्ले वाला, मेरा ये शोभा नहीं, ये आमलों का शोभा। और देखा ना बात उसकी ठीक आ गई, उन्होंने पक्का करके भेजा था, उन्हें कहा हजरत आप चलें मेहरबानी करें, चलो आप चले जाएं। उन्होंने कहा किसी तरह ले आना उसको, क्योंकि वो जिन जो था हर बंदे की तबीयत ठीक करता था, किसी को मारता था, किसी का पेशाब पखाना निकलवा देता था, इस तरह। चलो उन्हें कहा भी आप तो कम अज कम निकल जाए इसका, आज इसकी इंसल्ट और तोहीन देखो। वो ले आए, उन्हें कहा जब आए ना बाहर से दरवाजा बंद कर देना, तो मौलवी को अंदर डाल देना वरना तुम्हारा काम नहीं होगा। उन्होंने किया और दरवाजा बंद कर दिया। मौलवी साहब ने देखा ना कि मामला खराब है, कहने लगा बच्चे दे मेरे पास कुछ भी नहीं है, जारियां करने लगा, मिनते कर लगा, पांव पड़ गया, मुझे लाए हैं तू चला जाएगा मेरी रोटी बन जाएगी। जिन ने कहा मुझे डराने धमकाने वाले बहुत आए थे, मिंतू वाला पहला आए। तुझे चला देंगे, ये धूनी दे देंगे हाथ, खबरदार तुझे शाह जिन्नात कब चल रहा। बड़े आए थे, मैंने उनकी तबीयत ठीक की, मिनते करने वाला पहले आया, पहला ही बंदा आया। इन्हें मिनते की मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ले आए हैं। एक बुजुर्ग थे ना, उन्होंने तावीज दिया, या अल्लाह मैं जानता नहीं ये मानता नहीं होगा, जा ये तावीज है, और अल्लाह ने कर दिया। और मेरा भी वही हाल है बिल्कुल, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम राशि रोंदी ही मर जावा हो। उन्हें कहा मिनतों वाला पहला आया, बड़ी मिनतें की, उन्हें कहा आप क्या चाहते हैं, आप छोड़ जाएंगे मुझे रोटी भी मिलेगी, वाह वाह भी हो जाएगी, कोई कपड़े भी मिलेंगे, कोई खाना पीना भी, नोट भी। उन्हें कहा जा मैं छोड़ के जा रहा हूं, छोड़ के चला गया। मरीज सेहतियाब हो गया, दरवाजा खोला, उन्हें कहा मरीज ठीक ठाक, उन्हें कि क्या जिन खत्म, बाकी हर चीज खत्म हो गई। उन्हें कहा कैसे किया, मैं तो पांव पड़ गया। उन्हें कहा नहीं नहीं, यासी कहता है बहुत बड़ा आमिल है, उसकी तो गुड्डी चढ़ गई और तो वाह वाह हो गई, मेरा हाल भी वो पांव पड़ने वाला है। अच्छा वो मामू जो है ना मुस्कराया, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अल्लाह अगर मेरे किसी मुरीद की तेरी बारगाह में तेरा कोई मकाम है, बहुत बड़ा वास्ता है, बहुत बड़ा वास्ता, तो इस जिन्नी को हुक्म दे और जिन्नी मैं तुझे कह रहा हूं इस पे चली जा। अच्छा मैंने उन्हें अमल दे दिए, जो कुछ अमाल थे तस्बीहात थी कुछ चीजें दे दी, ये पढ़ो ये करो अमल करो, और कुछ ही दिनों के बाद वो कहने लगे जी इमरजेंसी है ऐसा है, उनके मामों की तबीयत खराब हो गई और वो चीज जो थी लगता है उसी पे मुंतकिल हो गई है, वो बोलती है वो कहती है, वो ठीक हो गया, मामों की तबीयत खराब हो गई है। अब मेरे पास मामों को ले आए, मैंने कहा मामों को मैं नहीं देखूंगा, मैंने खुद भेजा हुआ है, मैं कैसे उठाऊं। और ऐसी मेरा तुक्का लग गया, अंधा तीर था वो लग गया, वो समझते शायद कोई पहुंची सरकार है, उन्हें क्या पता जो अंदर से खाली बोल फारिग आदमी है। ये खून की बात सुना रहा था तो वो बात अधूरी रह गई, मैंने आपको खून के वाकया सुनाए कि जिन्नात खून कैसे चूसते हैं, याद है मैं ये रिवायत सुना रहा था कश्फ सत्तार अन अबातील अल अराफीन अल अशरार, इसके तक बिठा दो, इस फकीर को बिठा दो भाई बिठा दो। अल्लाह अकबर, ये भी जिन्नाती चीज है। हाँ ये मैं सही कह रहा हूं। तो अब सुने, बाज जिन्नात गोश्त काटने वाले गोश्त काटे जाने वाले और जानवर जिबिया किए जाने वाली जगहों पर इसलिए रहते हैं, मैं बात ये बात कर रहा था ना जिसको मैंने अधूरा छोड़ के फिर आपको कोई वाकयात बहुत सारे सुनाए, इसलिए रहते हैं कि वहां उनको खून के बुखारात से गिजा मिलती है। और अगली बात सुने, इसी गरज से वो लड़ने वाले फौजियों के साथ भी रहते हैं ताकि उनके खून के बुखारात से वो गिजा पाए, खून के बुखारात से गिजा पाए। मुझे कई मुजाहिदीन ने एक बात बताई, एक तो वो बात बताई कि जब उनको गुस्ल देने लगे तो उनके कपड़े नापाक थे, और आपको मैंने बताई थी बात, फिर मुख्तसर दोहराता हूं कि हमारा मौजू खून है, आपको मुख्तसर में बात दोहरा देता हूं। मुझे कई गुस्ल देने वालों ने यह बात बताई, मैं उनसे हाल पूछता रहता हूं कि कहते हैं कि मैयत का अमूमन पेशाब निकला हुआ होता है मौत की सख्ती, और बास का पखाना निकल जाता है, और कहा कि चंद ऐसे हैं मिसालें हमारे पास, चंद मिसालें ऐसी हैं कि पेशाब पखाना नहीं निकला हुआ होता, हालत इंजाल का वो मादा मौजूद होता है, वो जैसे वो सलवार का वो जिस्म का वो हिस्सा सारा वो होता है, उस पे अल्लाह पाक जल्ल शानहु जो नेक रूह है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राजियतम मर्जियम, ए नफ्स मुतमइन्ना अपने नफ्स मुतमइन्ना, आमिर सलीम साहब बुखारी क्वार्टर कर्माबाद वाले अपने घर वालों से राब्ता करें, आमिर सलीम बुखारी क्वार्टर कर्माबाद वाले अपने घर से राब्ता करें, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राजियतम फदखुली इबादी वध खुली जन्नतें, जो नेक रूहें होती हैं उनके जब फरिश्ते रूह कब्ज करते हैं उन्हें उस लज्जत में मशगूल कर देते हैं, और वो उस लज्जत में होते हैं, रूह उनके जिस्म में निकल जाती है, और वो उस लज्जत का डिस्चार्जिंग होती है, बस मैं बाकी वजाहत नहीं करता, वो होती है कैफियत। एक वो बात किसकी कर रहा था मैं, मुजाहिदीन की, और एक बात यह है कि वो कहते हैं कि जब कई लोगों ने आंखों से देखा जो सेहत याब हो गए, या जो मौत के वक्त वो कहते थे नेक जिन्नात आ गए हो, हमारे جسم سے لینے کے لیے آؤ آ جاؤ. ہمارا جسم ہر وقت حاضر ہے, ہم اللہ کے لیے زندہ ہیں, اللہ کے لیے مر رہے ہیں, مرتے مرتے ہمارے جسم سے تم بھی کچھ حصہ لے لو. یہ وہ روایت سامنے آ گئی, مرتے مرتے تم بھی ہمارے جسم سے حصہ لے لو. انسانی خون, حادثات, جنات شیاطین حادثات کرواتے ہیں, ان حادثات میں جو خون ابلتا ہے ان کو چوستے ہیں. کیا باتیں بتاؤں آپ کو, میرے غم کا قصہ طویل ہے. میں تو 6 بجے بیٹھا تھا, 9 بج گئے, 3 گھنٹے پتہ ہی نہ چلا. اللہ اکبر, آپ بھی ہلتے تو مجھے پتہ چلتا, گھڑیاں دیکھتے. اس دن ایک بندہ بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا, گھڑی دیکھو, میں کہوں اٹھ اللہ کا نام مت, اٹھ جاؤ, بار بار گھڑی دیکھے, بار بار گھڑی دیکھے, خجل کر دیا گھڑی دیکھ دیکھے اس نے. میں کرا رہا تھا اپنی ٹی وی کی ریکارڈنگ, میں انہیں کوئی کٹھے پروگرام کر کے دے دیتا ہوں, پھر وہ صبح کی مارننگ میں چلاتے رہتے ہیں. آخر ایک پروگرام میں نے چھوڑ دیا, میں کہا اٹھ, غلطی کی, بندہ سامنے بٹھایا کیوں میں نے, بندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوتا, میں کالے لے رہا ہوتا ہوں اور ٹی وی والوں کو ریکارڈنگ کر کے دے رہا ہوتا. میری قسمت, میں نے اس کو سامنے بٹھا لیا, بار بار گھڑی دیکھے. تو آپ گھڑی دیکھے تو میں اٹھوں, سنیں دو باتیں اور بڑی قیمتی ہیں. اللہ اکبر, شیخ ابو الوفا بن عقیل فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک مکان میں جو بھی رات کو قیام کرتا تھا صبح اس کی لاش ملتی. ایک دفعہ ایک مغربی, مغرب کہتے ہیں مراکش کو عرب میں, ہم تو مغرب ویسٹ کو کہتے ہیں, مراکشی مسلمان نے مکان لیا, رات بسر کی, صبح صحیح سلامت ملا. یہ دیکھ کر پڑوسیوں کو تعجب ہوا, وہ شخص کافی عرصے تک اس مکان میں بالکل عافیت سے مقیم رہا, پھر کہیں چلا گیا. بعد میں جب اس کی سلامتی کا راز پوچھا تو بتایا میں رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوتا, تو گھر میں موجود کنویں میں, سنیں سنیں غور سے سنیں ذرا, گھر میں موجود کنویں میں ایک نوجوان باہر آتا, مجھ سے قرآن کریم سیکھنے لگتا. میں نے اس سے پوچھا اس گھر کا کیا ماجرا ہے؟ آپ کو آج ایک راز سے اور پردہ اٹھوا رہا ہوں, اس واقعے سے, اس راز سے ایک اور پردہ اٹھوا رہا ہوں, اس واقعے سے تھک تو نہیں گئے؟ وہ کہنے لگا یہ گھر کا کیا ماجرا ہے, جو رات کو سوتا ہے صبح اس کی لاش پڑی ہوتی ہے کنویں میں سے, اور کنویں میں جنات رہتے ہیں, کنویں میں ہمیشہ جنات ہوتے ہیں. تو کنویں میں سے ایک جوان نکلتا, باہر آتا اور آ کے مجھ سے قرآن سیکھتا. میں نے پوچھا گھر کا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں, اس گھر میں اکثر بدکار اور شرابی اور بے نماز گناہ کرنے والے آتے ہیں, ہمیں اچھے نہیں لگتے, ہم انہیں مار دیتے ہیں. اب دیکھو آپ نے آ کے گھر میں نماز پڑھی, تسبیح پڑھی, قرآن پڑھا, ہم نے آپ کو کچھ کہا؟ میرے پاس بے شمار کیس ایسے آتے ہیں, گھر میں بیماریاں ہیں, گھر میں تکلیفیں ہیں, گھر میں دکھ ہیں, گھر میں الجھنیں ہیں, گھر میں ناکامیاں ہیں, گھر میں پریشانیاں ہیں. ہمارے پر کسی نے جادو کر دیا, دیورانی نے کر دیا, ساس نے کر دیا, بہو نے کر دیا, فلاں نے کر دیا, اور میں نے انہیں کئی دفعہ اعمال بتائے اور پتہ چلا گھر میں نیک مسلمان تھے, مسلمان جنات تھے جن کو یہ تکلیف دیتے تھے, انہوں نے اعمال کیے اور گھر سے موسیقی, بے پردگی اور ننگا لباس, کھلا گلا, ننگے سر وہ چھوڑ دیا, اور گھر میں رحمتیں عافیتیں آئیں, اور انہوں نے آ کے خود خوابوں میں اور جاگتے ہوئے کہا یہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہم تم سے ناراض تھے اور تمہیں تکلیفیں دیتے تھے, تم نے ختم کر دی, ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا, آج کے بعد ہم دونوں دوست ہیں اور بہن بھائی ہیں. کئی واقعات ہیں میرے پاس, اب یہ میں واقعات سنانا شروع کر دوں گا تو ایک بندہ بھی نہیں اٹھے گا اور صبح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ, ایک بندہ بھی نہیں اٹھے گا اور صبح بھی ہو جائے گی. واقعات اتنے دلچسپ ہیں اور عبرت انگیز ہیں, اور ہر واقعے میں سے ایک زندگی کی خبر ملتی ہے, ہر واقعے میں سے جینا ملتا ہے, مرنا ملتا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. تو چلتی ٹرین پہ آپ سے کوئی دین سیکھے تو اس کا جواب کیا ہے؟ مشاہدے کا انکار اور غیب کا اقرار. میرے کملی والے نے جو فرما دیا میری عقل میں آئے نہ آئے, میری سمجھ میں آئے نہ آئے, میرا شعور, میرا احساس, میرا ادراک, میری زندگی, میری محفل, میری سینس, میری تھنک, میری نالج, میرا سب کچھ, وہ کہے کچھ ہے, لیکن میرے کملی والے مدینے والے نے, اللہ اس کے حبیب نے جو فرما دیا وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ حقیقت ہے, وہ ساری کائنات ہے. بس کائنات ہے, وہ حق ہے, وہ حقیقت ہے, وہ ساری کائنات ہے. اس نشست کو آئندہ جمعرات پھر بیان کریں گے انشاءاللہ. 3 گھنٹے ہو گئے, بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے, 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. اس نشست کو آئندہ جمعرات پھر بیان کریں گے. آج آپ کو مبارک دوں, نوچندی ہے, خاص ذکر ہوں گے, خاص الخاص دعائیں ہوں گی, اور بارگاہ الٰہی میں انشاءاللہ قبولیت ہوگی. دل کی مرادیں, مشکلیں, پریشانیاں, آسیں, امیدیں اور اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ پوری ہوں گی, اور رحمت الٰہی متوجہ اور اس کا کرم اور فضل متوجہ, اس کی عطا اور شفقت متوجہ, اور انشاءاللہ سارا نظام ہمارے حق میں ہوگا. آج یہ اللہ کے فضل سے یہ خاص گھڑی ہے, اور انشاءاللہ ہم آئندہ جمعرات بھی اسی موضوع کو لے کر چلیں گے. کیا خیال ہے اسی موضوع لے کر چلیں؟ کون سا موضوع؟ مشاہدے کا انکار اور غیب کا اقرار. واہ واہ, سبحان اللہ. دو لفظوں میں ایک کلندر نے, درویش نے, دو لفظوں میں سارا دین, ساری کائنات سمو کے رکھ دی. واہ سبحان. کوشش کریں آیا کریں, کوشش کریں آیا کریں. روحانی تربیت اور ترقی کے راز پانے کے لیے انشاءاللہ حویلی میں 5, 6, 7 اپریل کو میں موجود ہوں گا. جمعہ ہفتہ اور اتوار صبح 10 بجے دعا ہوگی. خواتین اور مرد پردے کا انتظام, جو بچے ساتھ لائیں گی خواتین مجبوراً انہیں واپس بھیج دیا جائے گا, کیونکہ وہاں اس کی ترتیب سر دست نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو بچوں کی علیحدہ بلڈنگ ہے, علیحدہ ابھی حویلی میں احمد پور میں اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے. تو انشاءاللہ 5, 6, 7 جمعہ ہفتہ اتوار کو دعا, وہاں روحانی تربیت, مراقبہ, توجہات, جو آج میں نے جس پہ بات کی ہے ساری اسی چیز کے لیے, مراقبہ, توجہات, تسبیحات, اس کے لیے انشاءاللہ ہم وہاں اکٹھے ہوں گے. جو حضرات وہاں جانا چاہیں سعادت مند ہوں گے, اور انشاءاللہ 5 اپریل بروز جمعہ صبح سے لے کر 7 اپریل بروز اتوار 10 بجے اختتامی دعا ہوگی. بستر کے ہمراہ آئیں, بستر کے ہمراہ بغیر نہ آئیں, موسم کے مطابق. اور خواتین تشریف لائیں اپنے محرم کے ساتھ, لیکن بچوں کے ہمراہ والی خواتین تشریف نہ لائیں. اور انشاءاللہ ہمارا روحانی اجتماع حجویری محل میں ہوگا. ابھی سے دعائیں, اعمال مانگنا. 28 نومبر بروز جمعرات سے 1 دسمبر اتوار صبح دعا ہوگی. ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اسم اعظم کا دم انشاءاللہ 24 فروری کو ہوگا, صبح نماز فجر کے بعد, اور شفائیہ دعا ہوگی. اسی دن حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا کتاب پڑھی جائے گی, اور مراقبہ ہوگا, اور پوری دنیا میں خدمت والوں کا مذاکرہ بھی اسی دن ہوگا. آپ حضرات یہاں جب بھی تشریف لائے کریں, بستر کے ہمراہ آئیں قیام کے لیے, جب بھی تشریف لائیں. اور انگریزی کو, ہمارے درس کو لائیو انگریزی میں ترجمے کے لیے احباب توجہ فرمائیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پہ شفقت فرمائیں گے.
अभी जमात खड़ी होगी, किसी की जमात रह जाए तो नीचे 6 नंबर हाल में दूसरी जमात होगी, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। हामीम लायुन सारून 313 बार हमारा चंदा है, और शफकत फरमाया करें, मुझे यह चंदा जरूर दिया करें। यहां के निजाम मेरा, मेरी नस्लों का, मेरे साथियों का, पूरे निजाम का, सारे निजाम का, अबकरी का, तस्बीह खाने, दुरूद महल, हजवेरी महल, हवेली, इसका तसव्वुर करके अल्लाह किफायत फरमा, किफायत फरमा, गैब से अहल लोगों को मुतवज्जे फरमा, और हमें हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा, और क्यामत तक मदद फरमा। ये मेरा चंदा है, मुझे जरूर दिया करे। इस तरह या हफीज और या सलाम 1 तस्बीह या 11 बार और हामीम लायुन सारून 313 बार जरूर तवज्जो किया करें। इंटरनेट तस्बीह खाने और मोती मस्जिद में बाद लोग मेरी तरफ अपना ताल्लुक जोड़कर अजीब बातें फैलाते हैं, एहतियात करें। फेसबुक, इंटरनेट, ईमेल और खत या पूरी कापी लिखें, हर महीने कापी दें और अपने अहवाल लिखें, खास तौर पे तिब्बी रूहानी मुशाहदे लिखें, जो पाया वो लिखें वाकयात के साथ। खिदमत और इबादत के लिए तस्बीह खाने में चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने गुजारें। रिटायर्ड और बूढ़े हजरात अपनी जिंदगियां वक्फ करें तस्बीह खाने में। यहां पर खिदमत करने वालों को गिफ्ट, हदिया, चंदा, बख्शीश हरगिज न दें, और आपस में रिश्ते मामले अपनी जिम्मेदारी पर करें। जिक्र खास का कार्ड अभी आपके हाथ में है, अमानत है, साथ ना ले जाएं, कहीं खयानत ना हो जाए। और शजरा तैयबा, मुंतखब अहादीस, आदाब मार्फत हर घर की जरूरत है, जरूर पढ़ा करें, अपने मुताले में मुस्तकिल रखें। और घर बैठे फरी रूहानी जिस्मानी टोटके पाने के लिए फॉलो अपकरी का मैसेज अपने मोबाइल पे लगाएं। आपके मोबाइल पे अभी नहीं लगा हुआ तो 7 बंदे को बैठे लगाएं, कोई आपका खर्चा नहीं होगा, लेकिन आपको रोजाना रूहानी बेहतरीन तिब्बी कीमती मोती मिलते रहेंगे। कोशिश करें रोजाना 11 अफराद के मोबाइल पे लगाने का अज़्म करें। वुजू के लिए अपने ही जूते इस्तेमाल करें और अपनी जेबों और जूतों की हिफाजत करें। अभी उठेंगे मोबाइल और जेबों की हिफाजत करें, कोई हमारी वजह से गुनाहगार ना हो जाए। गाड़ियों की मोटरसाइकिल में पार्किंग में एहतियात करें, रास्ते बंद ना हो और गली में जगह जगह खवातीन खड़ी ना हो ताकि मर्द औरतें जमा ना हो। और अबकरी में जब भी तशरीफ लाएं तो बिस्तर हमरा लाया करें। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और इसको दुनिया आखरत की खैरों का जरिया बनाए। लंगर का इंतजाम, ऊपर फर्श गीला है बारिश की वजह से, तो गेट पर ही लंगर आपको मिल जाएगा, और बरकत है, घर ले जाएंगे, खाएंगे तो इंशाल्लाह घर वालों को भी बरकत मिलेगी। अब वो लम्हा, वो घड़ी है जब बैठ के अल्लाह से मांगने का वक्त, कबूलियत का वक्त, महबूबियत का वक्त, मकबूलियत का वक्त है। तो इंशाल्लाह हम जिक्र खास करेंगे, फिर उस पर उसके बाद सुल्तानुल अज़कार का जिक्र करेंगे, पूरे जज्बे के साथ, दिल के इखलास के साथ, पूरे जज्बे के साथ, फिर इंशाल्लाह दुआ करेंगे और फिर जमात खड़ी होगी। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب
ابھی پہلے انشاءاللہ سلطان الاذکار ہوگا آج نوشدی ہے اس کے بعد مراقبہ اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی قبولیت کا وقت ہے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ اور دعا دعا کی پوری قبولیت اور یقین کے ساتھ آہوزاری کے ساتھ اپنے لیے پوری امت کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ بجلی بند کرتے ہیں ساتھی
افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا لا لا الہ الا لا لا الہ الا لا
یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ایمان کا ذریعہ بنا، کامل اخلاق کا ذریعہ بنا، اخلاص عطا فرما اور برکت اور عافیت عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ ہماری حاضری کو موت کے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کا ذریعہ بنا. اے سخیہ کا جب ہماری لبیں بند آنکھیں بند، جسم ساکت اور تیرے پاس حاضری اور حضوری کا وقت ہو، کلمہ نہ چھین لینا ہماری کسی گناہ کی وجہ سے، ہماری کسی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ ہمیں کلمے سے محروم نہ کر دینا. یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا، خاتمہ ایمان پہ کرنا، خاتمہ ایمان پہ کرنا. اے اللہ ہمارے خاتمے کو ایمان پہ کر دے. یا اللہ ہمیں ایمان والی قبر دے دے، ایمان والی موت دے دے اور ایمان والی زندگی دے دے. اے اللہ پاکیزہ نظریں دے دے، پاکیزہ جذبے دے دے، پاکیزہ کمرے دے دے اور پاکیزہ در دے دے اور پاکیزہ گھر دے دے اور پاکیزہ مجالس دے دے اور پاکیزہ محافل دے دے اور پاکیزہ دوست دے دے اور پاکیزہ فرشتوں کی ممانست دے دے اور پاکیزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دے دے اور عشق دے دے اور اپنی پاکیزہ معرفت دے دے اور اپنی پاکیزہ محبت دے دے. مولا ہمارے دلوں کو قبول کر لے، ہمارے دلوں کو مزین کر لے، ہمارے دلوں کو مولا اپنی رحمت سے دور نہ کر، اپنی معرفت سے دور نہ کر، اپنی محبت سے دور نہ کر. دل کی دنیا آباد کر دے، من کی دنیا آباد کر دے، جذبوں کی دنیا آباد کر دے، ہمارے اندر باہر کو روشن کر دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے. کبھی در در کا محتاج نہ بنا، کبھی در در کا بھکاری نہ بنا، کبھی در در کا منگتا نہ بنا. مولا صدا اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا، ہمیں در کا سوالی بنا، ہمیں اپنے در کا سوالی بنا. ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما. سخی بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، ان کو بیٹے بیٹیاں دے دے، مقدر والے، نصیب والے اور بخت والے اور معرفت والے اور اعلی اخلاق والے، اعلی اخلاق والے. اے سخی آقا اولاد دے دے، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی قبر کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ یہ اولاد قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ نہ بنے یا اللہ، بلکہ سفارش کا اور شفاعت کا ذریعہ بنے. اے سخی آقا بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، مریضوں کو شفا دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، علیلوں کو صحت دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے. یا اللہ جن کا کوئی نہیں تو ہے نا مولا، تو ہے سخی آقا، بے در 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 پھر رہے تو ان کا سہارا بن جا، تو ان کا آسرا بن جا، تو ان کا حوصلہ ہے، تو ان کی آخری منزل ہے، تو ان کا آخری ساتھی ہے. اے سخی آقا ہماری ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما. کسی رونے والے کے صدقے، کسی سسکنے والے کے صدقے، کہ یہاں سے آج کوئی خالی نہ جائے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو مالا مال کر دے، سب تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے اور سب کو اپنی غیب کے خزانے سے دے دے، قیدوں کی خلاصی دے دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے اور ان کے قرضوں کے لیے سہولت کی راہیں بنا دے. یا اللہ سہولت کی راہیں بنا دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے، یا کریم آقا اس تسبیح خانے کی خیر کر دے، یہاں کے آنے والوں کی خیر کر دے، ان خدمت والوں کی خیر کر دے، اور ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے دے، یا اللہ ہر شر سے آفت سے حفاظت فرما، اور تسبیح خانے کو ہر فتنے سے قیامت تک محفوظ فرما، اللہ مجھے میری نسلوں کو تسبیح خانے کا ہمیشہ خادم بنا، میرے ساتھیوں کو خادم بنا، کبھی بھی ہمیں دور نہ کر، اللہ ہماری موت کے لمحے یہی کر دے، فاطمہ ایمان پہ کر دے، تسبیح خانے کو ہر آفت سے بچا، فتنے سے بچا، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اپنے خزانے غیب سے یہاں آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، ان کے گھر بھر دے، ان کے در بھر دے، ان کو سہارے دے دے، ان کو تسلیاں دے دے، تو کریم تسلیاں دے دے، اب روتے روتے ختم ہو جائیں گے، ہمیں آج تک لوگوں نے رلایا، کبھی تسلیاں نہیں میرا مولا، میرا موقع مولا، ہم تو روتے روتے آخر کار تیرے پاس آ جائیں گے، ہمیں تسلیاں دے دے، ہمیں ایمان دے دے، ہماری ضرورتیں پوری کر دے، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے، پوری امت کو ایمان دے دے، سارے جنات سارے انسانوں کو عافیت دے دے اور برکت دے دے، ہمیں فرشتوں کا قرب دے دے، ہمیں فرشتوں کی محبت دے دے، مولا 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 تو اپنے غیب کے خزانے سے کسی بچے کی آہ کے صدقے، کسی جوان کی توبہ کے صدقے ہمیں دنیا آخرت کی آج برکتیں دے دے، اور جہاں جس کونے میں کوئی تیری بندی بندہ آمین ہماری کہہ کے دعاؤں میں شامل ہے، ان کو بھی شامل فرما لے، ان کو بھی دے دے، سب کو دے دے، سب کو بھر دے، سب کو رنگ دے، سب کو دے دے، بن مانگے دے دے، دنیا آخرت سب دے دے، سب دے دے، سب دے دے، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہم اس وقت مجلس سے مجذوبی ہوگی، آپ نے درس میں یا میگزین میں اپنی میگزین میں کوئی روحانی عمل پڑھا ہو سنا ہو، اس طرح سے کوئی طبی ٹوٹکا کوئی عمل ہو سنا ہو آزمایا ہو کسی کو بتایا ہو، آپ کا اپنا مشاہدہ ہو یا کسی کو بتایا تھا، اس کے اعتبار سے کوئی مشاہدہ کوئی فائدہ ہو تو صرف اس کا تذکرہ کریں گے، اعمال کے فائدے مشاہدے اور فائدے تذکرے، ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے، نہ کوئی خواب اس کی تعبیر ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے، بلکہ صرف اعمال کے فائدے مشاہدے، اور اس کے اختتام پر اس میں موقع انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا، جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اس مجلس کے اختتام پر جب بیعت کا عمل ہوگا تب بیعت ہو سکیں گے، اور خواتین کی طرف بھی مائیں بہنیں بھی اس موقع پر بیعت ہو سکیں گی، اسپیکر چل رہے ہوتے ہیں تو بیعت کے کلمات دہرا لیں گے، ان کی بھی بیعت ہو جائے گی، جو حضرات پہلے سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ اس موقع پر دوبارہ بیعت کے عمل میں شریک ہو سکتے ہیں اپنی بیعت کی تجدید کی نیت سے۔
جی بتائیں کون بیان کرے گا، جی آپ بیان کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بچی کو کل رات کو بہت تیز بخار تھا اور دو دن سے مسلسل بخار تھا، رات کو میری آنکھ کھلی تو شدید بہت ہائی ٹمپریچر اس کو تھا، تو میں نے اصحاب کاف کا نقش جو ہے لکھ کر پانی میں ڈالا، اس کو پانی پلایا اور چھینٹے مارے اور سات بار پڑھ کے دم کیا، الحمد للہ وہ جو بخار بالکل اتر گیٹ نہیں رہا تھا، الحمد للہ وہ کہاں گیا پتہ ہی کوئی چلا گیا چلا گیا، میں نے اچھی بات فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون کا مجھے بتا رہی تھی کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، تو 9000 بار جو ہے اللہ کا نام یا متکبر پھر پڑھا انہوں نے 90 دن تک، الحمد للہ رشتہ ہو گیا۔
کتنی دفعہ؟
9000 مرتبہ یا متکبر 90 دن تک پڑھنا۔
ٹھیک ہے، اور بتائیں۔
میرے پاؤں میں گھوڑا بنا چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا، تو میں نے آپریشن تو نہیں کروایا، لیکن بزرگ کے بعد جو پاؤں میں پانی ٹھہر جاتا ہے उसको जख्म के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद ही वो जख्म बिल्कुल ठीक हो गया थोड़ा, और बगैर ऑपरेशन के वो ठीक हो गया।
मेरा नाम जैगम अब्बास है जी, लाहौर से। मैं अभी पिछले जुमे वाले दिन का वाक्य है, मैं हजरत साहब पर तशरीफ लाया था जुमे रात को दुआ के लिए कि मैं अगले दिन वीजे के लिए जा रहा हूँ। यूएस एम्बेसी मेरा एक अपॉइंटमेंट थी, सारे दोस्तों ने मना किया कि आपने वीजा नहीं लगवाना है क्योंकि मेरे कुछ करीबी जाने वाले दो तीन लोगों का अभी उन्होंने रिजेक्ट किया था बिला वजह। मैं एम्बेसी में अंदर चला गया, सारों से बड़े मुश्किल सवाल, किसी से कुछ पूछ रहे हैं किसी से कुछ पूछ रहे हैं, और कुछ 70-80% लोगों के उन्होंने रिजेक्ट कर दिए वीजे मेरे से। उसने खातून थी, मैं सिर्फ एक विद कर रहा था जब मैं एंटर हुआ था, हामी बिलाई शरून का और सूरह कौसर का। एक दफ़ा हामी बिलाई शरून पढ़ता था और एक दफ़ा सूरह कौसर पढ़ता था। और उसके बाद जब मैं गया उसने मेरे से बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पूछे, एक आधा सवाल पूछा बड़ा आसान सा, और उसके बाद कहते जी बस आप दो तीन दिन बाद अपना पासपोर्ट ले लीजिएगा, और कल अगर मतलब पासपोर्ट ही मिल गया और वीज़ा भी लग गया
जी। और बताएं जी।
मेरा नाम उमैर है, पाड़स। एक तिबी टोटका एक रूहानी वजीफा है। मेरी भांजी है तो
ये आखिरी होगा, उसके बाद
मेरी भांजी है तो उसको अगर बुखार हो गया बहुत तेज, तो मैंने यहाँ भी तो या सलाम 11 दफा पढ़ के और बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह एक तस्वीर ये पढ़ के दम किया तो वो माशाल्लाह ठीक हो गई। इसके अलावा तिबी टोटका अगर गुर्दे में पथरी हो तो इसका बड़ा आजमूदा मेरे बहनोई है, उनका अपना आजमूदा है कि एक चम्मच शहद, दो छोटे चम्मच जैतून का तेल और एक चम्मच है, दो छोटे चम्मच जैतून का तेल और एक पूरा लींबू नीम गर्म पानी के गिलास में निचोड़ के ये इसको मिक्स करके निहार पे इसको पीना है सुबह, और इसके आधे घंटे बाद नाश्ता करना है। तो ये चंद दिन करने से ही जो है पेशाब के रास्ते को पथरी जो है पाया जाती है।
ये साथी दरम्यान में रास्ता बना रहे हैं, दाएं बाएं हो जाएं और चादर दूर तक ले जाएं, इसको खोल लें। बाकी इस रास्ते गुजारिश अपनी जगह पर तशरीफ रखें जी। अब बैत का अमल होगा, खवातीन की तरफ भी बैत हो सकती है, हम माइक चल रहे हैं वो बैत के कलिमात दोहराने की बैत हो जाएंगे। देखें ये बैत का अमल है, बहुत से साथी इसके बाद पूछते हैं कि हमने बैत होना चाहते थे, तो बैत का अमल हो रहा है। जो जो हजरा साथी बैत होना चाहते हैं इस वक्त बैत हो सकेंगे, खवातीन भी बैत हो सकती हैं इस वक्त में। माइक चल रहे हैं उस तरफ बैत के कलिमात दोहरा लें, जो हजरात पहले से बैत हैं वो भी इसमें अपनी बैत की तजदीद के तौर पर दोबारा शरीक हो सकते हैं।
जी मैं अर्ज करता जाऊं, दिल ही दिल में दोहराते जाएं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه يا الله میں نے توبہ کی شرک سے بدعت سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ یا اللہ میری بیعت قبول فرما بیعت دراصل توبہ ہے، یا اللہ جو پچھلی زندگی گزری اس پہ تو ندامت اور استغفار ہے، اور آئندہ زندگی تیرے حبیب کے غلامی پہ۔ تین تسبیحات کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، نماز با جماعت، اور ہمارے حلال حرام جائز ناجائز معاملات ٹھیک ہوں اس پہ خوب نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ یہ درس بہترین رابطہ ہے، اب دوسرے شہروں میں ہے تو نیٹ موبائل میموری کارڈ کے ذریعے، میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، آپ بھی رابطے کے محتاج ہیں، تو کوشش کریں رابطے میں رہیں، اللہ قبول کریں۔